मंत्र है, ये चैतन्य भागवत में आता है और कई बार गौड़ीय वैष्णव ग्रंथों में आता है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितौ सह उदितौ। तो साधारणतया जब सूरज उगता है तो चांद डूबता है, और जब चांद डूबता है तो सूरज डूबता है। पर श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु एक सूरज और एक चंद्रमा के समान है, और दोनों एक साथ में उगे हैं, इसीलिए बड़ा अद्भुत है। और वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितौ गौड़ोदय पुष्पवंतौ। तो जिस इलाके में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, मायापुर का इलाका, उसको गौड़ कहते हैं। तो गौड़ोदय, और जैसे ही कोई बगीचा होता है, जैसे सूरज उग जाता है तो फिर जो फूल होते हैं सब फूलने लगते हैं। तो चित्त तो गौड़ोदय पुष्पवंतौ, और चित्रौ छंदौ तमोनुदौ। तमोनुदौ मतलब सारा जो अंधकार है, अज्ञान है, तमोगुण का प्रभाव है, नुदौ उसका नाश होता है। चित्रौ छंदौ, चित्रौ मतलब बड़ा जैसे चित्रपट होता है सुंदर, छंदौ बड़ी शांति संतुष्टि प्रदान करता है वो। तो श्री ऐसा सूरज है जो उगता है गौरांग महाप्रभु का, वह अज्ञान का अंधकार दूर करता है, और वह सर्वोच्च शांति और संतुष्टि है, वह उसकी छाव प्रदान करता है। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य,
वंदे श्री कृष्ण चैतन्य
नित्यानंद सहोदितौ,
नित्यानंद सहोदितौ
गौड़ोदय पुष्पवंतौ,
गौड़ोदय पुष्पवंतौ
चित्रौ छंदौ तमोनुदौ,
चित्रौ छंदौ तमोनुदौ।
वंदे श्री कृष्ण चैतन्य,
वंदे श्री कृष्ण चैतन्य
नित्यानंद सहोदितौ,
नित्यानंद सहोदितौ
गौड़ोदय पुष्पवंतौ,
गौड़ोदय पुष्पवंतौ
चित्रौ छंदौ तमोनुदौ,
छंदौ तमोनुदौ।
वंदे श्री कृष्ण चैतन्य,
वंदे श्री कृष्ण चैतन्य
नित्यानंद सहोदितौ,
नित्यानंद सहोदितौ
गौड़ोदय पुष्पवंतौ,
गौड़ोदय पुष्पवंतौ
चित्रौ छंदौ तमोनुदौ,
छंदौ तमोनुदौ।
हरे कृष्ण। पूर्णिमा महोत्सव में आपका स्वागत है। जैसे कृष्ण प्रभु बता रहे थे 3 साल बाद कई बार आने का योजना था, पर भगवान की कृपा चाहिए आप सबका संग प्राप्त करने के लिए। तो पिछले 2 बार प्रेरणा आदि कार्यक्रम के लिए आना था, पर किसी ने किसी कारण से आ नहीं पाया। तो आनंद है कि आज आ पाया हूँ, और राधा मदन गोपाल जी के विग्रह बहुत सुंदर हैं, और आप सब पे वो कृपा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जब वृंदावन मंदिर बनाया था तो सब भक्त उनके कह रहे थे कि वृंदावन में राधा कृष्ण का, आप राधा कृष्ण का मंदिर बनाओ। प्रभुपाद जी बोले थे कि बहुत से राधा कृष्ण के मंदिर है, हम कुछ विशेष बनाएंगे। तो फिर उन्होंने कृष्ण बलराम मंदिर बनाया, जो नासिक है उसमें प्रभु श्री रामचंद्र के बहुत मंदिर है। तो यहाँ पे भक्ति का भाव वही है, पर यहाँ पे राधा मदन गोपाल का जो सुंदर मंदिर है ये नासिक के लिए भी एक आभूषण है। तो आज मैं गौर पूर्णिमा के अवसर पे श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं उनका थोड़ा संक्षिप्त में परिचय देकर, फिर चैतन्य चंद्रोदय नाटक नाम का जो ग्रंथ परमानंद कवि कर्णपूर ने लिखा है उससे कुछ लीलाएं चर्चा करूंगा मैं। तो चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव 1488 में हुआ आज ही के दिन, और वो 48 साल तक हमारे बीच में थे, और वो 88 साल तक रहे, और 88 से अधिक उनके बारे में जीवन चरित्र लिखे गए। बहुत से बायोग्राफीज उनके बारे में लिखे गए, पर दुर्भाग्यवश से उनमें से अनेक जो व्हाट इज द बायोग्राफी,
चरितावली,
चरितामृत, ओके, जीवनी, जीवन चरित्र, करेक्ट, आत्मचरित्र इज ऑटोबायोग्राफी। तो जीवन चरित्र लिखे गए, दुर्भाग्यवश उनमें से अनेक जो है अभी नहीं है, लुप्त हो गए हैं। तो मेरे कई मित्र हैं जो अभी गौड़ीय वैष्णव में रिसर्च कर रहे हैं, तो बंगाल के जो परंपरा से पीढ़ियों से गौड़िया वैष्णव है, उनके घर के किसी कोने में कोई गौड़िया ग्रंथ पड़े होंगे। तो जो चैतन्य चरितामृत जो प्रधान ग्रंथ है चैतन्य महाप्रभु के जीवन के बारे में, वह बंगाली साहित्य के इतिहास में इकलौता ऐसा ग्रंथ है जो मूल ग्रंथ बंगाली में है और उस पर भाष्य संस्कृत में लिखा गया है। साधारणतः ऐसे होता है कि संस्कृत में मूल ग्रंथ होता है और जो जो उस इलाके की भाषा होती है उसमें उस पर भाष्य लिखा जाता है। तो पर ये चैतन्य चरितामृत इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ था कि कृष्णदास के विराज गोस्वामी जो लिखा था तो उस पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक संपूर्ण भाष्य लिखा, और उन्होंने जो भाष्य लिखा वह संस्कृत में लिखा था। तो जो श्री चैतन्य महाप्रभु जब वो भोगतधाम लौट गए तो उन्होंने जो वैष्णव गौड़िया वैष्णव का सिद्धांत था और जो प्रणाली थी सब जगह प्रचार की थी, पर प्रधान रूप से चार जगह थी। तो कवि कोरणापुर बताते हैं कि वो कर्नाटक के जो मलहट्ट नाम के वहाँ पे राजमंत्री है वह प्रताप रुद्र से मिलने आते हैं, और जो चार प्रमुख जगह थी, एक थी वृंदावन जहाँ पे गोस्वामी गण थे, बंगाल जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य और फिर उनसे जो शिष्य और जो वंश आए थे वो थे, फिर ओडिशा में प्रताप रुद्र के बाद वहाँ पे जो भक्त तेसारो भट्टाचार्य आदि, और चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में जब प्रचार करने गए थे तो वहाँ पे अनेक भक्त थे। तो जो खेतुरी ग्राम में पहला गौर पूर्णिका का महोत्सव हुआ तो वहाँ पे लाखों की मात्रा में भक्त आए थे सब जगह से, पर प्रधान ये चार जगह से भक्त आए थे, दक्षिण भारत, ओडिशा, बंगाल और वृंदावन। और हर एक जगह जो भगवान की भक्ति होती है वह भाव एक होता है पर उसका जो प्रकटीकरण होता है अलग अलग होता है। तो जो वृंदावन था वह पारंपरिक रूप से एक पांडित्यिक जगह थी, तो इसीलिए जो वृंदावन में ग्रंथ लिखे गए गौड़िया सिद्धांत के बारे में वे सब ग्रंथ जो थे वो संस्कृत में लिखे गए, और बंगाली में जो ग्रंथ लिखे गए थे वो बंगाल में और ओडिशा में जो ग्रंथ लिखे गए थे वो सब बंगाली में लिखे गए थे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये ऐसे इकलौते व्यक्ति थे कई उस पीढ़ी में चैतन्य महाप्रभु के बाद के पीढ़ी में कि वो बंगाल में जन्म हुआ था, उनका बचपन से वो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुन रहे थे और बाद में उनको नित्यानंद प्रभु की प्रेरणा मिली और फिर वे वृंदावन वे नवद्वीप से वृंदावन चले गए और वृंदावन में जाकर उन्होंने गोस्वामियों से प्रशिक्षण लिया। और इसीलिए जो बाकी सब ग्रंथ है, चैतन्य भागवत है, चैतन्य भागवत वृंदावनदास ठाकुर ने लिखा है, चैतन्य मांगल लोचनदास ठाकुर ने लिखा है आदि ग्रंथ है, वह अधिकांश जो ग्रंथ है लीलाओं से भरी हुई है। तो बंगाल में जो ग्रंथ लिखे गए थे वो चैतन्य महाप्रभु के जीवन के बारे में लीलाएं लिखी गई थी, और वृंदावन में जो ग्रंथ लिखे गए थे जैसे भक्ति रसामृत सिद्धू है या फिर जीव गोस्वामी ने षट संदर्भ लिखे थे, उस पर दुर्गम संगमनी टीका लिखी थी, बहुत से ग्रंथ लिखे थे, वो अधिकांश ग्रंथ जो थे वो तत्वज्ञान के बारे में थे, गौड़ीय तत्वज्ञान। तो यहाँ पे बंगाल में लीला लिखी गई, वृंदावन में तत्वज्ञान लिखा गया। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बंगाल से वृंदावन में गए और उन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसमें लीला और तत्वज्ञान का संगम किया है उन्होंने। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और ये ऐसा ग्रंथ है वास्तव में कि जिसमें वो केवल एक जीवन चरित्र नहीं है, वह वास्तव में एक तत्वज्ञान का ग्रंथ है जो एक जीवन चरित्र के रूप में लिखा गया है। तो जो पहले 13 अध्याय है चैतन्य चरितामृत के, पहले 12 अध्याय वास्तव में वो पूरा तत्वज्ञान ही प्रस्थापित कर रहे हैं वहां पे। तत्वज्ञान प्रस्थापित करने के बाद फिर 13वें अध्याय से चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव वह चालू होता है। और जैसे कभी किसी को कुछ रूम का फोटो देखना है तो ऊपर से कैमरा से फोटो देख रहे हैं, और अगर कोई चीज अच्छा दिख गया, कुछ इंटरेस्टिंग दिख गया तो उस पर क्लोजअप करते हैं, उसे फोकस करते हैं। तो वैसे ही श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु का वो 13वें अध्याय से लेकर जो उनके जीवन का प्रारंभ वर्णन चालू करते हैं, तो आदि लीला में 17 अध्याय है, फिर मध्य लीला में 25 अध्याय है और फिर अंत लीला में 20 अध्याय है, और इन सब में वे उनके जीवन के बारे में आगे आगे बता रहे हैं। पर जब भी कोई तत्वज्ञान का विषय आता है तभी वो क्लोजअप लेते हैं, और तभी विस्तारित रूप से बताते हैं। तो इसीलिए ये कई बहुत ही महत्वपूर्ण वार्तालाप जो हुए थे चैतन्य महाप्रभु उनके भक्तों में, तो उस पर उसका बहुत विस्तार रूप से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताया है। और यह जो तत्वज्ञान के संवाद थे उसको श्री प्रभुपाद ने एक विशेष किताब बनाई, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य नाम के। तो इसमें जो चैतन्य महाप्रभु के जीवन प्रधान संवाद थे वो रूप और सनातन गोस्वामी के साथ उन्होंने शिक्षाएं दी। तो वो जो मध्यलीला का 19वां अध्याय है, फिर 20 से 24वां अध्याय है, वो दो संवाद थे। फिर जो मध्यलीला में ही जो 7वां अध्याय है वह है रामानंद राय के संवाद है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण संवाद है। और फिर दूसरा एक संवाद है सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ, एक और संवाद है प्रकाशानंद सरस्वती के साथ। तो ये जो 5 संवाद है यह संपूर्ण गौड़ीय सिद्धांत का विस्तारित रूप से वर्णन करते हैं। और फिर इसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़े विस्तारित रूप से वर्णन किया है। तो इसके अलावा भी जो चैतन्य भागवत है उसमें जो वृंदावन दास ठाकुर वो अधिकांश रूप से लीलाएं बताते हैं और बड़े भक्तिभाव से वो भरी हुई लीलाएं हैं। और भक्तिसान सिंह ठाकुर कहते थे कि अगर किसी चैतन्य महाप्रभु के प्रति आकर्षण जागृत करना है तो वृंदावन दास ठाकुर का चैतन्य भागवत पढ़ना चाहिए। इस तरह से चैतन्य मंगल जो है वह भी बहुत सुंदर ग्रंथ है। तो उनमें से जो एक ग्रंथ है जिससे मैं कुछ चर्चा करूंगा वो है चैतन्य चंद्रोदय नाटक। तो चैतन्य चरितामृत ये जो है मैं वो अलग से कहा वह एक तत्वज्ञान वो जीवनी ग्रंथ है, पर तत्वज्ञान पे केंद्रित जीवनी है, जीवन चरित्र है। तो कवि कर्णपुर जो थे वो एक महान वक्ता और पंडित थे और उन्हें कई ग्रंथ लिखे हैं। कृष्णलीला के बारे में ग्रंथ लिखा है, बहुत विख्यात ग्रंथ है। और जो कवि काव्यात्मक अलंकारों से भरा हुआ है उसका नाम है आनंद वृंदावन चंपू, वो वृंदावन लीलाओं पर आधारित है। और जो उन्होंने चैतन्य चरितम चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर कई ग्रंथ लिखे हैं, तो उसमें से दो प्रधान हैं। तो उनमें से ये जो है चैतन्य चंद्रोदय नाटक ये एक नाटक के रूप में है। तो नाटक के रूप में लिखना यह एक वैष्णव साहित्य का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो श्री राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में रूप और सनातन गोस्वामी ने ललित माधव और विदग्ध माधव ये लीला ये नाटक लिखे हैं। और ये नाटक के बारे में जब चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं तो उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो रूप गोस्वामी को पूर्ण आशीर्वाद देते थे, उसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है। तो ये जो चैतन्य चंद्रोदय नाटक है उसकी शुरुआत ऐसे होती है कि अभी चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला खत्म करके भगवत धाम लौट गए हैं और केंद्र जो है यहाँ पे जगन्नाथपुरी में है। और जगन्नाथपुरी में प्रताप रुद्र महाराज जो बहुत ही पराक्रमी राजा थे और वह भी चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त बन गए हैं, अभी रथ यात्रा का उत्सव चालू हो रहा है और प्रताप रुद्र महाराज विलाप कर रहे हैं कि देखिए यही वह जगन्नाथ है, यही रथ यात्रा है, यही जगन्नाथ का मंदिर है, वही सब भीड़ है, वही गुंडीचा मंदिर है, वही मार्ग है, पर वह रस नहीं है, पर वह रस नहीं है क्योंकि अभी श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं है। तो मैं ये कैसे विरह सहन कर सकता हूँ, जगन्नाथ जी यहाँ पे प्रकट हो गए हैं, इससे दिव्य आनंद होना चाहिए, पर जितना जगन्नाथ जी प्रकट हो रहे हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करके मुझे चैतन्य महाप्रभु का स्मरण हो रहा है और उनसे जो विरह है वह असहनीय हो रहा है। तो मैं ये विरह के बीच में कैसे मेरा जीवन जी सकता हूँ। और तो उस समय वो चैतन्य महाप्रभु के सारे पार्षदों को याद करते हैं और सोचते हैं किस पार्षद से मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण कर सकता हूँ। वह याद करते हैं प्रताप रुद्र महाराज कैसे वही जगन्नाथ यात्रा के समय में जब चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वह राजा थे प्रताप रुद्र इसीलिए उनसे मिलना नहीं चाहते थे, तो तभी प्रताप रुद्र महाराज ने एक साधारण वेश पहन लिया, एक साधारण नागरिक का वेश पहन के जब चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में नृत्य करके थक गए थे वहां पे जगन्नाथ वल्दम गार्ड वाटिका में थोड़ा विश्राम कर रहे थे, तो वहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में जाके गिर गए प्रताप रुद्र महाराज, उनको प्रणाम किया। और फिर वे जो गोपी गीत है वे गाने लगे। और जब वे जो विख्यात श्लोक आता है गोपी गीत जो है संपूर्ण श्रीमद् भागवतम के पराकाष्ठा के समान है, 31वां अध्याय दशम स्कंद का, और उसमें जो श्लोक आता है 12वां श्लोक है,
तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम विगृणन्ति ये भूरिदाजनः।
तो यहाँ पे जो गोपियां हैं वो भगवान कृष्ण के विरह में आतुर हो गई है। भगवान कृष्ण ने रासलीला के लिए उनको बुलाया है और वे चले गए हैं भगवान। जब भगवान चले जाते हैं तो गोपियां आतुर होकर प्रार्थना करने लगती है। और जीव गोस्वामी अपने गोपाल चंपू में बताते हैं कि ये जो श्लोक है हर एक श्लोक कौन से गोपी ने लिखा है, कौन से गोपी ने, ललिता देवी ने यह श्लोक गाया है, विशाखा देवी ने यह श्लोक गाया है, तुंग विद्या ने श्लोक गाया है, चित्रा ने श्लोक गाया है, क्योंकि वो हर एक गोपी का भाव जानते हैं और किस प्रकार की भावना श्लोक से वर्णित हो रही है वो बताते हैं। तो इस श्लोक में गोपी गीत में बता रहे हैं, तो भागवतम में ये सब गोपियों का विस्तारित वर्णन नहीं है, वहां पे श्री गोप्यः ऊचू बताया गया है कि ये गोपियां गा रही हैं। तो ये श्लोक बता रहे हैं कि हे प्रभो आप कथा जो है तब कथामृतम तप्त जीवनम, ये जो जीवन है भौतिक जगत के वासनाएं और चिंताएं इनसे पीड़ित है। हमारे जगत में हमारे जीवन में जितनी हमारी वासनाएं हैं, जितनी कामनाएं हैं, जितनी इच्छाएं हैं, वो इच्छाओं के पूर्ति के लिए चिंताएं आ जाती हैं और इन दोनों से हम चिंतित विचलित हो जाते हैं। तो उससे राहत प्राप्त करने का मार्ग क्या है,
कवि भिरीडितम कल्मषापहम।
तो जो महान कवि है वह आपकी लीलाओं का वर्णन करते हैं और उससे जो कल्मष है हृदय में जिनके कारण हम भौतिक चीजों के पीछे लग जाते हैं,
कल्मषापहम,
वो नाश हो जाता है। और न केवल कल्मषों का नाश हो जाता है, कोई लोग कहे कि अगर इच्छा ही नहीं है जीवन में तो फिर जीवन का मतलब क्या रहेगा, मैं करूंगा क्या जीवन में।
श्रवण मंगलम श्रीमदाततम,
श्रवण मंगलम, जो मंगल ऐसे नहीं है कि सब इच्छाओं का त्याग करना, जो मंगलमय इच्छा है वह है आध्यात्मिक इच्छाएं, भगवान की भक्ति में प्रगति करने का, तो वह इच्छाएं जागृत होते हैं भगवान की लीला श्रवण करने से। श्रीमदाततम, और ये बड़ी शक्ति, दिव्य शक्ति से भरी हुई, दिव्य भाग्य से भरी है। और जो महान भक्त है वो सारे पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं,
भूमि गृणन्ति ये भूरिदा जनः।
तो यहाँ पे जो गोपियां वर्णन कर रही है वह कह रही है कि हे प्रभु हम आपके विरह में अभी जल रहे हैं, तो अभी कोई अगर आप नहीं आएंगे तो किसी को आप भेजो जो आपकी लीलाएं सुनाएगा और हमें आपके विरह से राहत दिलाएगा। और कोई जब आता नहीं देखते हैं तो गोपियां क्या करती है, खुद ही भगवान की लीला का वर्णन करती है और एक दूसरे को राहत देती है। तो यहाँ पे अभी है, मैं तीन स्तर पे ये बोल रहा हूँ, ये मूल प्रसंग जो है वह तीसरे स्तर पे है। वह क्या है, अभी प्रताप रुद्र महाराज वो विचलित हो गए हैं कि गौरांग महाप्रभु के विरह को मैं सहन कैसे करूँगा, और वो सहन करने के लिए वह भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, और वह सुनने के लिए वो स्मरण करते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जब भगवान के विरह में थे तो तभी मैंने गोपी गीत गाया और उससे उनको राहत मिल गई। और फिर वो तभी स्मरण करते हैं कि कैसे गोपियां जब भगवान के विरह में थी तो उन्होंने गोपी गीत गाकर और सुनकर एक दूसरे को सुनाकर राहत प्राप्त की। तो वो स्मरण करते हैं कि जो भगवान के पार्षद है उनमें से बहुत ही उत्कृष्ट पार्षद जो अभी है वह है परमानंद कविकर्णपुर। तो वे उनको बुलाते हैं और उनको आदर सत्कार करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि कृपया आप श्री गौरांग महाप्रभु की लीलाओं के बारे में वर्णन कीजिए, और न केवल वर्णन कीजिए, आप उनके बारे में वर्णन एक नाट्यात्मक रूप से कीजिए। नाट्यात्मक रूप से सिर्फ भाव विभोर होकर बताना नहीं है, पर वो आप इस तरह से वर्णन कीजिए कि उसके आधार पर एक नाटक लिखा जा सके। तो फिर कवि कर्णपुर उनके देखते हैं कि उनकी कितनी इच्छा, ज्वलंत इच्छा है श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण करने की। और फिर उसके बाद में वह चैतन्य चंद्रोदय नाटक, तो हमारा जो नवद्वीप मायापुर में जो इस्कॉन का मंदिर है उसको श्री प्रभुपाद जी ने क्या नाम दिया है, चैतन्य चंद्रोदय मंदिर, चंद्र उदय। तो साधारणतया जब धूप होती है, सूरज उगता है, तो जो सूरज उगता है तो रोशनी आती है, पर जो रोशनी कभी कभी काफी हो जाती है तो गर्मी लगने लगती है। तो इसीलिए जब भगवान के कृपामय भाव का वर्णन होता है तो भगवान का की तुलना जो होती है सूरज से नहीं की जाती है, चंद्रमा से की जाती है। भगवान के ही दो ही रूप है जिनकी तुलना सूरज से की गई है शास्त्रों में, एक है नरसिम्हदेव और दूसरा है विराट रूप। जो नरसिम्हदेव क्रोध में थे और विराट रूप भी जो है वह भी दिव्य सूर्य सहस्रस्य, वो तो अर्जुन कहते हैं कि ये जो ज्योति है वो सहस्र सूरज भी आ जाएगा तो वो भी कम पड़ जाएगा, इतनी ज्योति है ये। तो इसके विपरीत जो भगवान का जो चेहरा है जब वो कृपामय भाव में है, क्रोधित भाव में नहीं है, तो उसको चंद्र से तुलना की जाती है। तो इसीलिए चैतन्य चंद्र उदय नाटक, चैतन्य चंद्र कैसे उनका आगमन किया उन्होंने और कैसे उन्होंने लीला की, तो उदय तो एक समय हुआ जो आज के दिन आज की शाम को हुआ, पर जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला विस्तारित की, सारे भारत भर प्रवास किया, तो जहां भी गए वहां पे उनके लीला का उदय होते गया। तो इस तरह से ये जो नाटक है चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कैसे कृपा सब जगह फैलाई उसका वर्णन करते हैं। तो इस नाटक में जो नाटक जब होता है तो उसमें एक डायरेक्टर होता है और फिर उसमें कई एक्टर होते हैं। तो जो संस्कृत में डायरेक्टर होता है उसको, जो नाटक में मुख्य सारे वो आयोजन कर रहा है उसको सूत्रधार कहते हैं। जो सूत्रधार है वह प्रकट होते हैं और वह कहते हैं, उनके साथ उनके एक परिप्राशिक है, उनका एक सहयोगी है, तो वह कहते हैं कि ये अहोमंगल की बात है कि आज मैं सारे जन समाज के कल्याण के लिए चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर एक नाटक कर रहा हूं। तो उनका सहयोगी कहता है कि ये चैतन्य महाप्रभु कौन है, अगर तुम्हें चैतन्य महाप्रभु पता नहीं है तो लगता है अभी तक तुम अपनी मां के गर्भ में ही जी रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु वो उन्होंने प्रकट होके ये कलयुग का जो अंधकार था उसमें रोशनी से साचारी दिशाओं को उजागर कर दिया है, और ये चैतन्य महाप्रभु कलयुग के अंधकार में एक मार्ग है, इसके अलावा उद्धार का कोई और सरल मार्ग नहीं है। तो इस तरह होता है, बोले कलयुग तो अज्ञान अन्याय मोह इन सब का युग है, इसमें धर्म का ज्ञान और धर्म की रोशनी का प्रचार कैसे हो सकता है। तो कहते हैं यही तो श्री गौरांग महाप्रभु के विस्मयपूर्ण लीला का महिमा है वह। तो जो सहयोगी होते वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कृपया मुझे इसके बारे में बताओ। बोले कि वास्तव में ये जो कली है ये इतना क्रूर है, इतना निष्ठुर है, और वह तो सारे विश्व पर अभी राज्य कर रहा है, उसके साम्राज्य को चुनौती कौन दे सकता है। तो जब ऐसे चर्चा हो रही है तभी किसने मुझे क्रूर और निष्ठुर कहा, किसकी ऐसी औकात हुई कि मैं जो राजा हूं उसको क्रूर और निष्ठुर कह रहे हैं। तो जब ऐसे सुनते हैं तो जो सूत्रधार है और सहयोगी है वो देखते हैं और देखते हैं कि वहां से कलिराज आ रहा है, और कलिराज के साथ कलिराज का जो सहयोगी है अधर्म आ रहा है, वो कलिराज का सेनापति है। और जब सूत्रधार देखते हैं बोलते हैं कि अभी कलिराज यहाँ पे आ रहा है, अभी हम यहाँ से अदृश्य होकर सब कुछ देखेंगे, तो फिर वो अदृश्य हो जाते हैं। और फिर कलिराज और वहां पे अधर्म उनका जो सहयोगी आता है और वो कहते हैं कौन है वो व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं क्रूर निष्ठुर मैं यहाँ का राजा हूं। तो जब कलियुग ऐसे कह रहे हैं तो उनका जो चेला है अधर्म वो कहता है यहाँ आपने तो सारे दिशाओं में जो धर्म था उसका नाश कर दिया है और अपना राज्य प्रस्थापित कर दिया है। तो जब ये कलिराज सुन रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो जो व्यक्ति था वो कोई जो ये बता रहा था वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो चैतन्य महाप्रभु का भक्त है, और चैतन्य महाप्रभु जो है वह मेरे राज्य को उध्वस्त कर रहे हैं, मेरे राज्य को उध्वस्त कर रहे हैं। बोले ये कैसे संभव हो सकता है, ये तो तुम्हारा राज्य है, कौन है ये चैतन्य महाप्रभु जी बताओ। वह तो बोले वह वास्तव में एक बालक है। बालक तो वो कुमारक ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो कुमारक, तो कुमारक का पहला अर्थ है बालक, पर ये अधर्म सोचता है कि बालक और कलिराज से कैसे उनके राज्य को कैसे विनाश कर सकता है। तो उसने कुमारक का अर्थ क्या हो सकता है, कुमारक जो बुरी तरह से मारता है। तो सोचते हैं कि यह कौन है, सबसे क्रूर तो आप हो, तो आपसे क्रूरता से और मारने वाला और कौन है यहाँ पे, कुमारक कौन है यहाँ पे। बोलते हैं कि यह कुमारक नहीं है, यह कुमार है। तो कुमार है तो कुमार से आपको भय किस बात का है। बोलते हैं कि यह साधारण कुमार नहीं है, यह जो कुमार है वह सारे देवताओं का, सारे ब्रह्मांडों का स्रोत है। कहते हैं वह जो परम भगवान है वह तो कलयुग में आते ही नहीं है, तो इसीलिए उनको शास्त्रों में बताया गया त्रियुगी है वह, कि वह कलयुग में आते ही नहीं है, उनको इसीलिए त्रियुगी नाम से बताया गया है। तो आचार्यगण बताते हैं श्री राधा मदन गोपाल भगवान की, कि ऐसे शहर में कभी कोई इलाका होता है जहां पे गुनहगार इतने होते हैं, माफिया का अड्डा होता है वहां पे, तो वहां पे अगर कोई व्यक्ति जाता है, वो चोरी हो जाता है उससे कुछ, उसका 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 पर्स, उसका वैलेट, और बाद में पुलिस के पास जाता है, कहता है कि मैं वहां पे गया था, मेरा पैसा चोरी हो गया। तो पुलिस बोलते है जान बच गई, अच्छा हो गया। तुम वहां पे गए क्यों थे, वहां पे हम भी नहीं जाते। तो ये जैसे शहर में माफिया का इलाका जैसे होता है, वैसे विश्व के इतिहास में कलयुग ये माफिया का इलाका है। तो इसलिए जैसे पुलिस भी माफिया के इलाके जाते नहीं है, वैसे भगवान इस कलयुग में अवतार भी नहीं लेते हैं। वह भाव है, पर यह जो भाव है यह एक नियम के सिद्धांत से, नियम के दृष्टि से है, पर भगवान केवल एक नियंत्रण करने वाले शास्ता नहीं है, भगवान एक प्रेम प्रदान करने वाले, सबसे प्रेम करने वाले पिता भी हैं। और कोई नागरिक अगर गुनहे के इलाके में होगा, वहां पे शायद पुलिस नहीं जाएगी, उनको खतरा होगा, तो पर अपना पुत्र इसी इलाके में होगा तो पिता जरूर जाएंगे। तो ठीक उसी तरह से आचार्यगण बताते हैं कि जो भगवान है कलयुग में अपना राज्य इस प्रस्थापित करने के लिए नहीं आते, क्योंकि कलयुग जो है वह अधर्म का राज्य है उसमें, पर फिर भी जो बचना चाहते हैं उनको बचाने के लिए भगवान स्वयं आते हैं और एक अद्भुत अवतार में आते हैं। वह अवतार क्या है, वह श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंद में नौवें अध्याय में प्रहलाद महाराज जब प्रार्थनाएं कर रहे हैं नरसिम्हा देव से, वह भगवान के अलग अलग लीला अवतारों के बारे बोलते हैं, और वो कहते छन्न कलौ यद अभव त्रियुगोथ सत्वम। वह कहते हैं कि आपको त्रियुगी बताया गया है, क्यों साधारणतः लोग कहते त्रियुगी बताया गया क्योंकि आप तीन युगों में आते, बोलते नहीं, छन्न कलौ यद अभव त्रियुगोथ सत्वम, आप कलयुग में एक छन्न अवतार के रूप में आते, इसीलिए यद अभव, इसीलिए आप, क्योंकि कलयुग में आप प्रकट रूप में नहीं आते हैं, इसीलिए आपको त्रियुगी बताया गया है, पर आप आते हैं हमेशा, आप सबका कल्याण करते हैं। तो जो कलयुग में भी आप कल्याण करते हैं, छन्न कलौ, एक छन्न अवतार में आते हैं आप, और वास्तव में कलयुग में आप सबसे अधिक कृपा प्रदान करते हैं। क्यों, क्योंकि जो मान लीजिए कोई बड़ा धनवान व्यक्ति है और वह दानशील भी है, तो साधारणतः दान देगा वो, पर अगर किसी जगह पे कोई भूकंप हो जाता है और सब कुछ उद्ध्वस्त हो जाता है, तो जो दानशीलता का प्रवृत्ति है वह और उद्दित हो जाती है, और इसीलिए वह व्यक्ति और दान देता है। तो ठीक उसी तरह से कलयुग जो है वह एक आध्यात्मिक आपत्ति के समान है। यहाँ पे जो भी धर्म के संयोजना थी, धर्म के प्रणाली थी, वह सब इस अधर्म के भूकंप से उध्वस्त हो गई है। तो उसके कारण भगवान एक पिता होने के कारण त्याग नहीं करते, उनकी करुणा और जागृत होती है, और जागृत होती है, और इसीलिए वे प्रकट होते हैं एक बहुत ही करुणामय रूप में। वो रूप है श्री चैतन्य महाप्रभु। ये भगवान की करुणाओं के बारे में हम चर्चा और करेंगे शाम को, पर अभी हम जो यह चैतन्य चंद्रोदय नाटक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वो कहते हैं अधर्म जो है, वो कहता है ये कौन ऐसे बालक है जिसके बारे में आप, जिसके कारण आप चिंतित हो गए हैं। तो बोलते हैं कि यह बालक सारे ब्रह्मांडों का स्रोत है और यह कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। तो सोचते हैं कि और सुनते हैं तो उनको सब पीछे से कि हरिनाम संकीर्तन का आवाज सुनाने लगता है, और हरिनाम संकीर्तन का आवाज सुनाने लगता है तो सब जगह दिव्य आनंद और एक दिव्य उन्माद होने लगता है। तो यह सुनकर जो धर्म है वह चिंतित हो जाता है, अधर्म जो है चिंतित हो जाता है, सोचता है कि ये संकीर्तन की ध्वनि सुन के ही मेरी सारी शक्ति चली जा रही है, मैं बिल्कुल शक्तिहीन धैर्यहीन हो जा रहा हूं, क्या करूं मैं। और वो तो सोचते हैं कि मेरा स्वामी जो कली है उन्होंने पहले ही हार मान ली, अगर मैं अभी हार मानूंगा तो क्या होगा। सोचते हैं कि हाँ एक योजना आ गई है, क्या है, ये बालक कितना भी शक्तिशाली हो इस भौतिक जगत में जो है सबसे शक्तिशाली जो है यह काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। तो हमारा जो बहुत शक्तिशाली सेनापति है काम, हम क्या करेंगे, काम से इस श्री चैतन्य पे आक्रमण कर देंगे, और फिर वह जब पर्यास्त हो जाएगा तो फिर वह पर्यास्त हो जाएगा तो सारा धर्म बंद हो जाएगा। तो जो कलिराज कहते हैं यह तो किताब का सबसे पुराना ट्रिक है, मैं पहले ही ट्राई कर चुका हूं या पहले ही मैं कर चुका हूं। तो क्या हुआ, अधर्म कहते क्या हो गया, तो कहते हैं कि वास्तव में भगवान आते हैं तो भगवान उनके किसी वह इस भौतिक जगत के नाश्वर नश्वर रूप से वह आकर्षित नहीं होते हैं, वह उनके साथ ही उनकी भार्या को लेके आते हैं और उनकी जो जो लक्ष्मी देवी है उनके साथ आती है और वह लक्ष्मी प्रिया के रूप में आई थी। तो जब मेरे जो साथी थे उन्होंने कहा कि अब ये बालक है बाल लीला कर रहा है, जब नौजवान हो जाएगा तो लक्ष्मी प्रिया से मिलन कर लेगा और सारा धर्म के बारे में भूल जाएगा और खुद ही लीला करते रहेगा। तो मैं उन पर विश्वास करके मैं इंतजार कर रहा था, पर जब लक्ष्मी प्रिया देवी आ गई तो उन्होंने उनके साथ कुछ लीलाएं की, पर फिर बाद में वे जानते थे कि वे संन्यास लेने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी योजना से लक्ष्मी प्रिया को भगवत धाम भेज दिया। तो जब भगवत धाम भेज दिया तो मैं बड़ा हताश हो गया, पर फिर मैंने सोचा कि मैं एक और रास्ता इस्तेमाल करूंगा। तो इसीलिए मैंने सची माता पे प्रभाव करके बाकी सब मायापुर वासियों के प्रभाव करके श्री चैतन्य महाप्रभु का विवाह विष्णु प्रिया से कर दिया तो वास्तव में यह क्या होता है, एक गांव में एक बार बड़ा आलसी व्यक्ति था, तो वो अपने घर से भी नहीं निकलता था, हमेशा पड़ा रहता था। तो एक बार देखा कि अपने घोड़े पे बहुत तेज से दौड़ जा रहा है, घोड़े पे तेज से जा रहा है, तो बोले अरे आज क्या हो गया, आप तो इतना आलसी, इतना तेजी कैसे जा रहे हैं आप, मुझे मत पूछो घोड़े को पूछो तो वास्तव में ये जो हो रहा है यह सब भगवान अपने अंतरंग लीला कर रहे हैं, पर कलियुग सोच रहा है कि कलिराज सोच रहा है कि मैं ये सब कर रहा हूं तो भगवान अपनी स्वेच्छा से वह लक्ष्मी प्रिया से विवाह करते हैं, फिर विष्णु प्रिया से विवाह करते हैं, पर जैसे भगवद गीता में बताते हैं भगवान, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। वह सोचता है जो जीवात्मा प्रकृति के गुणों से मोहित हो गया है वह सोचता है कि मैं कर्ता हो गया हूं, तो उसी तरह से कलिराज सोच रहे कि मैं कर्ता हूं, मैंने ये सारा किया, चैतन्य महाप्रभु का विवाह इनसे करवाया फिर इनसे करवाया, पर वास्तव में भगवान की अपनी लीला चल रही है। पर और फिर वो जो विष्णु प्रिया देवी है उनके सौंदर्य उनके सद्गुणों का सब वर्णन करते हैं और वो बोलते तभी तो मुझे पूरा विश्वास हो गया था, अभी मुझे चैतन्य महाप्रभु चैतन्य से उनका नाम था बचपन में विश्वंभर था, विश्वंभर से भी कोई चिंता नहीं है मुझे। पर चैतन्य महाप्रभु अचानक वो अपने घर में थे और एक दिन उनको क्या विचार आ गया, वो चले गए वो चले गए गाया में और उन्हें घर में कहा कि मैं जा रहा हूं मेरे पिताजी का श्राद्ध करने के, श्राद्ध का जो अवसर था उसके लिए पिंडदान करने के जा रहा हूं। पर जब वहां पे गए तो उन्होंने क्या किया, वहां पे वे ईश्वर पूरी से मिल गए और जब ईश्वरपुरी से मिले तो ईश्वरपुरी ने क्या जादू किया उन पे मुझे पता नहीं, वो पूरे ऐसे परिवर्तित हो गए कि ये अपनी पत्नी से अपने घर वाले सबको भूल गए और सिर्फ भगवान कृष्ण का कीर्तन 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 करते रहे। और तब से जो उनका पागलपन है वह दूसरे उनके लोग उनसे मिलने आए, उनका पागलपन कम करने गए, पर उन्होंने अपना पागलपन सबको फैला दिया है अभी। तो अभी वास्तव में मैंने सारा प्रयास कर लिया है जो तुम बोल रहे पहले ही कर चुका, कुछ फायदा नहीं होता इसका। तो फिर कोई बात नहीं है, हम जानते हैं। तो अधर्म ने कहा कि कोई बात नहीं है, अगर काम काम नहीं करता है तो हमारे पास उससे दूसरा बड़ा अस्त्र है क्रोध। तो आप जानते हैं कि पहले हमने विश्वामित्र मुनि को काम से गिरा दिया, फिर पहले वो पहले कौन आई थी, मेनका आई थी, फिर बाद में रामभा आई और फिर उसको वो क्रोध से गिर गए। तो हम काम नहीं चलेगा तो हम क्रोध लगेंगे। तो बोले वो भी मैंने प्रयास कर चुका हूं, कुछ नहीं हुआ। बोले क्या, ऐसे कैसे हो सकता है, बताइए क्या हुआ। तो बोलते हैं कि वास्तव में जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाएं कर रहे थे तो उनकी लीलाओं से सब प्रभावित हो गए, सब आकर्षित हो गए। यहां तक कि न केवल जो भक्ति के प्रवृत्ति के थे, पर जो ब्राह्मण थे वो भी आकर्षित हो गए, जो नीच जाति के लोग थे वो भी आकर्षित हो गए, म्लेच्छ भी आकर्षित हो गए। तो मैं सोच रहा था कि जो भक्ति की ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं वो अभक्ति का कार्य करेंगे तो उससे ये जो चैतन्य है वो क्रोध हो जाएंगे, पर जो भी उनके संपर्क में आते थे वो भी भक्ति का प्रभाव हो जाता था। तो एक बार एक बहुत नशा करने वाला एक म्लेच्छ था और वह चैतन्य महाप्रभु के वहां से गुजर रहा था और उसको तभी नशा मिल नहीं रहा था। तो अगर कोई नशापान से आसक्त है, बद्ध है, उसको नशा नहीं मिलता है तो बहुत क्रोध हो जाता है वो, तो कहीं ना कहीं से तो भाई शराब चाहिए अभी। तो मैं सोचा था कि वो अभी मैंने ऐसी योजना की कि वो चैतन्य महाप्रभु से मिलेगा और चैतन्य महाप्रभु भी क्रोध हो जाएगा और फिर चैतन्य महाप्रभु क्रोध हो जाएंगे और फिर वो क्रोध से मेरे पकड़ में आ जाएंगे। पर वो उसने जैसे ही वो चैतन्य महाप्रभु को देखा तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या जादू किया पता नहीं, उसको अपने जीवन का सबसे बड़ा नशा मिल गया और उस नशे से वो ऐसा उन्मत्त हो गया कि आज तक अभी तक उन्मत्त है वो, और अभी किसी नशा की जरूरत ही नहीं है उसको। वो तभी से हरिनाम में लग गया है और उसके जो सहभागी थे, उसके जो बाकी म्लेच्छ धर्म के लोग थे, वो ये पागल हो गया है। उसको पागलपन से बचाने के लिए वो पीटने लग गए, पर जो उसको स्पर्श कर रहा था वही पागल हो जाता था। तो इसीलिए बाकी सब लोग उसको पीटना भी छोड़ दिया और वो अभी भक्तों के संग में आके भक्ति कर रहा है। तो यह देखकर तो मैं भयभीत हो गया और फिर मैं विचार करने लग गया अभी क्या करूं। तभी मैंने सोचा कि ये जो चैतन्य महाप्रभु है वो सब पे कृपा कर रहे हैं, पर नवद्वीप में दो व्यक्ति है। वह बहुत ही धर्मशील परिवार में जन्म हुआ था पर अभी वे अधर्म के मूर्तिमान रूप बन गए हैं। कौन है वो? जगाई और मधाई। तो मैं उनका और चैतन्य महाप्रभु को आमने सामने ला दूंगा तो फिर क्या होगा? तो फिर चैतन्य महाप्रभु बड़े क्रोध हो जाएंगे और मैं ऐसी योजना करूंगा कि चैतन्य महाप्रभु साधारणतया जो पतित लोग हैं उन पर क्रोधित नहीं होते, उन पर कृपा करते हैं, पर वो अपने भक्तों पे बहुत प्रेम करते हैं और अगर कोई अपने उनके भक्तों पे आक्रमण करेगा तो फिर वो सही में क्रोध हो जाएंगे। तो मैं ऐसी योजना करूंगा कि चैतन्य महाप्रभु न केवल जगाई मदाई से उनका संपर्क होगा पर ऐसे परिस्थितियों में उनका संपर्क होगा कि चैतन्य महाप्रभु जरूर क्रोध हो जाएंगे और जब क्रोध हो जाएंगे तो वे मेरी पकड़ में आ जाएंगे। तो फिर उन्होंने तो अभी ये तो जो लीला चल रही है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बता रहे हैं कि आप घर घर में जाओ और आप सबका उद्धार करो। तो क्या होता है, भगवान की लीला चल रही होती है पर उसके साथ साथ जो बद्ध जीवात्मा होता है वह सोचता है कि मैं अपना कुछ कार्य कर रहा हूं। तो एक बार प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट में आए थे तो फिर कई अखबार वाले उनका इंटरव्यू करने आए थे। जब इंटरव्यू करने आए थे तो तभी इंटरव्यू हो गया और जा रहे थे तभी रुकिए रुकिए प्लीज वेट प्लीज वेट। तो उन्होंने देखा कि वहां पे एक रिपोर्टर एक फोटोग्राफर लेट आए थे और कृपया रुकिए हमको आपको इंटरव्यू लेना है। तो फिर प्रभुपाद जी देख रहे थे और रुक गए वो। तो उनके साथ वहां पे जो फिलाडेल्फिया मंदिर के अध्यक्ष थे रविंद्र स्वरूप प्रभु वो भी रुके थे और फिर वो आ गए और उन्होंने वो फोटोग्राफर तुरंत अपना फोटोग्राफर लगा दिया कैमरा लगा दिया और फिर वह इंटरव्यू करने लग गए. वीडियो कैमरा था, फोटोग्राफर नहीं थे, वीडियोग्राफर थे वो. तो फिर वो पूछने लग गए, सवाल पूछा उन्होंने कि आपके आप जो सिखा रहे हैं उसमें और बुद्धिज्म में क्या फर्क है. तब ये सोच रहा था वो अपना जो मुझे कुछ अभी कहानी लिखनी है इसके बारे में, तो सवाल पूछते कुछ. तो प्रभुपाद जी बोले कि हमें बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, इस्लामिज्म, क्रिश्चियनिज्म उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, हम सिर्फ सत्य सिखा रहे हैं. तो अभी वो चकमा गया, क्या बोले अभी. तो बोले प्रभुपाद जी उसके आंखों में देखने लगे, और अगर तुम सत्य चाहते हो तुम हमारा अनुकरण करो, हमारा हमारे हमारे अनुसार तुम कार्य करोगे. तो अभी उसके बाद में उसका सारा इंटरव्यू का प्लान था बोलती बंद हो गई, क्या सवाल. तो प्रभुपाद जी जब बोल रहे थे बड़े गंभीरता से, इफ यू आर ट्रूथफुल यू विल एक्सेप्ट व्हाट वी आर टीचिंग. रविंद्र स्वरूप लिखते हैं कि वहां पर जो रिपोर्टर आया था वो उनका साक्षात्कार हुआ कि रिपोर्टर सोच वो अपनी एक कहानी लिखना चाहता था, और उस कहानी में वो सोच रहा था कि प्रभुपाद जी को मैं एक भूमिका दे दूंगा. एक स्वामी है वो भारत से आए हैं, तो वो क्या सिखा रहे हैं, बुद्ध क्या सिखाते हैं, उनके समानता क्या है, फलक क्या है, उससे मैं एक कहानी बना दूंगा. बट प्रभुपाद जी ये आध्यात्मिक जगत से आए हैं और वो सब बद्ध जीवात्माओं को भगवान के उद्धार की कहानी में एक भूमिका दे रहे हैं. तो इसीलिए वो क्या देख रहे थे, वो इस रिपोर्टर को एक रिपोर्टर के रूप में नहीं देख रहे थे, वो उसको एक आत्मा के रूप में देख रहे थे. और ये रिपोर्टर क्या, ये धर्म क्या है, वो धर्म क्या है, वो धर्म क्या है, इसके टेक्निकलिटी, इसकी छोटी छोटी बातों में फंस कर जो परम सत्य के बारे में जो प्रगति करनी है वो भूल जा रहे थे. तो प्रभुपाद जी बोले हम सत्य सिखा रहे हैं, और अगर आप सत्यवान हो, सत्यशील हो, आप स्वीकार करोगे इसका. ठीक उसी तरह से कलिराज सोच रहे थे कि मैं अभी सारे जगह मदाई की लीला कर रहा हूं, पर चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला कर रहे हैं. चैतन्य महाप्रभु जब लीला कर रहे थे तो फिर उन्होंने कहा नित्यानंद प्रभु से, हे नित्यानंद प्रभु आप घर घर में जाके उद्धार करो सबका. और जब इस तरह से लीला कर रहे थे तो वो जगाई मदाई की लीला आप सबको पता है, मैं उसमें विस्तारित में नहीं जाऊंगा अभी. पर पहले बार जगाई मदाई का जब मुलाकात होती है तो वो लीला में और रस लाने के लिए क्या करते, नित्यानंद प्रभु और जो हरिदास ठाकुर होते हैं वहां से भाग जाते हैं. और फिर दूसरी बार पुनः जब मिलते हैं तो तभी नित्यानंद प्रभु जो होते हैं वो कहते हैं जगाई मदाई से कि कृपया आप हरिनाम का जप कीजिए, आप हरिनाम लीजिए. तो जब इस तरह से बोलते हैं वो, तो वास्तव में जब जगाई मदाई को पहली बार देखते हैं नित्यानंद प्रभु तो सोचते हैं, होते हैं कि उनकी जो आंखें हैं वो एक्साइटमेंट से चमकने लगती है, वो उत्साह से चमकने लगती है. वो सोचते हैं कि अगर इनका उद्धार हो जाएगा तो फिर चैतन्य महाप्रभु की जो महिमा है तीनों लोकों में फैल जाएगी. जैसे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जो भगवान नारायण है उन्होंने अपने नाम के द्वारा ही अजामिल का उद्धार कर दिया, तो वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा फैल जाएगी कि उन्होंने भी जगाई मदाई का उद्धार किया. इसीलिए वो फैसला कर लेते कि मैं इनका उद्धार करके रहूंगा. और फिर इसीलिए दूसरी बार जाते, जब जा रहे होते हैं तो हरिदास ठाकुर कहते हैं इस इलाके में पहले ही हम खतरे में गए थे, वापस क्यों जा रहे हैं यहाँ पे. तो नहीं नहीं हमें यहीं पे जाना है. और जब जाते हैं तो कहते हैं कि कृपया आप का उद्धार, आप कृपया हरिनाम लीजिए. तो जो मदाई होता है क्रोध हो जाता है और वह शराब का पटा, चले जाओ यहाँ से. तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नित्यानंद प्रभु कहते मैं जाऊँगा पर कृपया आप पहले जप कीजिए. तो मदाई इतना उन्मत्त होता है कि वो क्या करता है, शराब का मटका होता है, जोर से फेंकता है नित्यानंद प्रभु के सिर पे. जब सिर पे लगता है तो खून बहने लगता है, सारा खून उनके चेहरे पे आ जाता है. तो जब ये हरिदास ठाकुर डर जाते हैं, बाकी सब जो लोग होते हैं वे डर जाते हैं. तो जो अभी तभी वापस प्रहार करने आता है, जगह उनको रोक देता है. और जब चैतन्य महाप्रभु को समाचार पहुंचता है, चैतन्य महाप्रभु क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर तेजी से वहां पे आ जाते हैं. और जब वहां पर क्रोधित होकर आ रहे हैं तो वो चिल्लाते हैं चक्र चक्र, और उनके हाथों में उनका सुदर्शन चक्र आ जाता है, और जो आसमान में बिजली चमकने लगती है, जो गड़गड़ाहट होने लगती है. और यह देख के कलीला सोच रहे कि अभी मैं यशस्वी हो गया, अभी मैं यशस्वी हो गया, अभी ये क्रोध के पकड़ में आ गए हैं. और सोचते अभी अभी मान लीजिए विजय होने ही वाला है. और जब विजय होने ही वाला है तो कभी कभी क्या होता है, आखिरी मोमेंट में कुछ बिल्कुल उल्टा हो जाता है. जैसे जब जयद्रथ की लीला होती है तो सूर्य जो होता है ढक जाता है, तो जयद्रथ और कौरव को लगता है कि अस्त हो गया है, तो इसीलिए जयद्रथ सबके सामने प्रकट हो जाता है और कहता है अर्जुन तुम्हारे लिए, तुम चिता में जलने वाले हो, तुम्हारे लिए आग लगाऊं मैं अभी? तो आग क्या होती है, उनको उकसा रहा, चिल्ला रहा होता है। तो भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से, कहते हैं कि अभी तक समय है और तुम ब्रह्मास्त्र अपने तीर पे लगाओ, ब्रह्मास्त्र तीर पे लगाओ। और फिर क्या करते हैं, वो चक्र को बाजू कर देते हैं और वो कहते हैं अर्जुन से, वो देखो सूर्य, वो देखो जयद्रथ। और आखिरी समय में जब कौरव को लग रहा है कि जीत गए, तभी हार जाते हैं। तो कैसे है, कोई क्रिकेट मैच में एक टीम पूरा जीत रहा है, जीत रहा है, और आखिरी ओवर में भी 36 रन चाहिए और कोई बैट्समैन 6 छक्के मार देता, जीत जाता है दूसरा टीम, जो क्या हो गया ये। तो वैसे ही अभी कलिराज सोच रहा है कि अभी चक्र भी प्रकट हो गया है, चैतन्य महाप्रभु भी क्रोधित हो गए हैं, ये चक्र है यहाँ पे जगह ही मदाई का गला है, जाएगा और अभी क्रोध से क्रोध के पकड़ में आ जाएंगे। और वो सोच रहा है, अभी खुश हो रहा है, तभी क्या होता है, वो समझ में, उसको पता नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु कृपा के परम मूर्ति है, पर उनसे भी बड़े कृपाशील कौन है, नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु बीच में अचानक आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के पैरों में गिर जाते हैं और बोलते अगर आज तक मैंने कुछ पुण्य किया है, मैंने कुछ भक्ति की है, मैंने कभी आपको कुछ प्रसन्न किया है, मैंने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं है, मैं आज आपको सिर्फ एक दान मांगता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु क्रोधित हो गए, पर फिर भी भक्त का निवेदन है उसको वो दुर्लक्ष नहीं कर सकते, बोलते क्या क्या चाहिए, ते ये जो दो व्यक्ति है इनका देह आप मुझे दान में दे दो। और कलिराज सुनता है सत्यानाश। तो इस तरह से जो कलिराज जो है वह अधर्म से चर्चा कर रहा है कि मैंने इतने सारी योजनाएं बनाई, किसी का भी कुछ भी फायदा नहीं है, काम भी कुछ काम नहीं करता है, क्रोध भी काम नहीं करता है। बोलता है कि हाँ काम और क्रोध काम नहीं करता है तो लोभ काम कर सकता है, तो हम प्रलोभित कर देंगे। तो बोलते हैं ये जो लोभ है, चैतन्य महाप्रभु ने तो लोभ की बात छोड़ उन्होंने संन्यास ले लिया, अभी तुम क्या करोगे, किसी भी भौतिक चीज से वो आकर्षित नहीं है और सब कुछ त्याग करके अभी भ्रमण कर रहे हैं, सारे देश भर में सब लोगों का उद्धार कर रहे हैं। फिर वो दूर से देख रहे हैं, तो ये जो कलिराज अभी चैतन्य महाप्रभु विद्यमान है, अभी नाटक में जो लीलाएं बता रहे हैं, नाटक की रचना चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद हो रही है, पर नाटक में जो वर्णन हो रहा है चैतन्य महाप्रभु की लीला अभी चल रही है। बोलते हैं कि वास्तव में जो व्यक्ति जिस तरह से नाच रहा है, गिर रहा है, रो रहा है, ये तो पागल लगता है मुझे, तो यह हमारा जो काम क्रोध लोभ मोह जो है, मोह पहले से इनको ग्रस्त कर दिया है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं उसे। तो वास्तव में कहते हैं यह मोह जो है ये महामाया का मोह नहीं, योग माया का मोह है ये। तो बोलते क्या मतलब, बोले ये ऐसा मोह है जो जो दो मोह तुम डालते हो लोगों पे, उससे वो बंधन में फंस जाते हैं, पर ये मोह ऐसा है कि जिससे बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तुम्हारा जो मोह है उसका पागलपन क्या है कि भगवान जहां है भी वहां भगवान दिखते नहीं हो, दिखो वो मोह ऐसा है, पर वो योग माया का, वो महामाया का मोह जो है कि मंदिर में भी आएंगे तो बोले ये पत्थर है, भगवान थोड़ी है, ये जहां भगवान है वहां पे दिखेगा नहीं, पर योग माया का मोह ऐसा है कि जहां भगवान नहीं भी है वहां भगवान दिख जाएगा। तो वो जो मोह है वास्तव में भगवान सब जगह पे है, पर हमारे दृष्टि दिखते नहीं है योग माया की दृष्टि से। स्थावर जंगम ना देखी तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन आता है कि स्थावर जंगम ना देखी, वह कोई चल या अचल चीज, यहाँ पे कोई पत्थर है, यहाँ पे कोई हिरन है, यहाँ पे कोई पक्षी है, कुछ देख ही नहीं रहते। स्थावर जंगम ना देखी तारमूर्ति, देखी तारमूर्ति, वह सब जगह भगवान को ही देख रहे थे। सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति, सर्वत्र है, सब जगह क्या होता था उनको, इष्ट देव स्फूर्ति, इष्ट देव उनके कृष्ण भगवान थे, उनकी स्फूर्ति हो रही थी। तो वास्तव में जब चैतन्य महाप्रभु प्रवास कर रहे थे तो जब भी उनको कोई छोटी सी छोटा सा जंगल भी दिख जाता था, कोई वन दिख जाता था तो उनको क्या स्मरण होता था? वृंदावन का स्मरण होता था। कोई भी नदी दिख जाती थी तो इनको किसका स्मरण होता था? यमुना का स्मरण होता था। कोई भी छोटा सा कोई पर्वत या पहाड़ दिख जाता तो क्या होता था? गोवर्धन का स्मरण होता था। तो अभी यह महत्वपूर्ण है, अगर चैतन्य महाप्रभु कोई जंगल को देख रहे हैं, सोच रहे वृंदावन है, तो क्या वह जंगल वृंदावन है? क्या वह जंगल वृंदावन है? अगर हाँ कहेंगे तो फिर, अगर नहीं कहेंगे तो क्या होता है? उसका मतलब है चैतन्य महाप्रभु गलती कर रहे हैं। और अगर हाँ कहेंगे तो फिर चैतन्य महाप्रभु उसी जंगल में क्यों नहीं रुकते, वृंदावन क्यों जाते रहते आगे? तो चैतन्य महाप्रभु जो भी जंगल देखते हैं वह जंगल देखते जरूर है, पर फिर भी उसी जंगल में रुकते नहीं है, वो आगे जाते रहते वृंदावन की ओर। तो क्या होता है, आध्यात्मिक जीवन में हम हाँ ना से जवाब प्राप्त नहीं कर सकते। कई बार जो होता है वह एक भावना का सवाल है। वो ऐसे कभी कभी ऐसे सवाल अगर हम पूछते हैं तो वह सवाल क्या होता है, वो हमें फंसा देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति को आप जाके पूछते हैं, क्या आपने आपके पत्नी को पीटना बंद कर दिया है? तो अगर नहीं बोला, क्या बेशर्म है अभी तक पीटते हो? तो अगर हाँ बोल दिया, देखो तुमने ही मान लिया कि पहले तुम पीटते थे। तो क्या है, हाँ या ना जो भी बोले फंस जाते हैं वो। तो फिर उसका जवाब है, किसने बोला कि मैं ऐसे कुछ करता हूं? तो जो मूल जो उसका जो एजम्पशन है, जो व्हाट इज एजम्पशन, जो उसका अनुमान जो है वह गलत है वहां पे। तो ठीक उसी तरह से क्या भगवान गलती कर रहे हैं, यह सवाल ही गलत है। क्योंकि जो भगवान करते हैं वह परम सत्य है, पर यहां पे भाव क्या है, चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं वहां पे, वो आध्यात्मिक जगत में एक तत्व है और एक रस है। तो तत्व के स्तर पे हर एक जो जगह है वो वृंदावन नहीं है, पर रस के स्तर पे वास्तव में जो भी चीज हमें भगवान का स्मरण दिलाती है वह हमारे चेतना को और कृष्ण भावना अमृत करती है। और जितना व्यक्ति हर एक चीज का संबंध भगवान से जोड़ सकता है, हर एक चीज के द्वारा भगवान का स्मरण कर सकता है, उतना उस व्यक्ति का रस और ऊंचा है, उतना उस व्यक्ति के जो प्रगति आध्यात्मिक चेतना है वो और ऊंचे है। तो इसीलिए यह जो है हम भौतिक स्तर पे सही और गलत जो बोल रहे हैं वह आध्यात्मिक स्तर पे लगता नहीं। कि आध्यात्मिक स्तर पे अगर नंद महाराज जो है वह सोचते हैं कि ये कृष्ण को इतने खतरे आते हैं, अभी मैं मेरे वेबसाइट पे कई बार सवाल जवाब देता करता हूँ, तो मुझे कुछ दिनों पे सवाल पूछा गया कि अगर कोई साधारण घर में है और कोई बालक को बहुत खतरा होता है तो फिर क्या करते हैं? माता पिता कहते तुम घर से बाहर मत जाओ, हम तुम्हारा संरक्षण करेंगे। तो फिर तो यशोदा माई नंद महाराज जो है वह देखते हैं कि इतने सारे असुर आते हैं, कृष्ण को खतरा होता है, तो वो कृष्ण को फिर बाहर जाने ही क्यों देते हैं कि तुम घर में ही रहो, हम तुम्हारा संरक्षण करेंगे। तो वो ये तो विश्वास नहीं कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, वो सोचते हैं कृष्ण हमारा बालक है। तो नंद महाराज क्या सोचते हैं, कई कारण है इसके लिए। एक कारण यह है कि नंद महाराज सोचते हैं कि हमारा कर्तव्य तो हमें करना चाहिए, भय के कारण कर्तव्य छोड़ना नहीं है। पर नंद महाराज ये भी सोचते हैं कि वास्तव में अगर मैं नारायण की पूजा अच्छी तरह से करूंगा तो ये सारे जो असुर आ रहे हैं वो सब, उनका विनाश कैसे हो रहा है? वो सोचते हैं कृष्ण की शक्ति से नहीं हो रहा है, वो सोचते हैं कि मैं नारायण की पूजा कर रहा हूं, नारायण अपने चमत्कारी शक्ति से कृष्ण को संरक्षण कर रहे हैं। तो ये उनका भाव होता है। तो अभी क्या ये गलत है? तत्व के स्तर पर हम कह सकते गलत है, पर वास्तव में ये एक भक्त के भगवान की सेवा की तीव्रता का लक्षण है कि हर तरह से भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो जो वात्सल्य रस में सेवा कैसे करना चाहते हैं? संरक्षण के द्वारा। इसीलिए वे भगवान की प्रार्थना करते हैं और संरक्षण कराते हैं। तो रस के स्तर पे हर तरह से भगवान का स्मरण करना यह कोई गलती नहीं है, यह परम सत्य है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो मोह है वह वास्तव में सर्वोच्च रस का लक्षण है, उससे ऊंचा कोई रस नहीं। कि हर जगह हर चीज के द्वारा सिर्फ भगवान का स्मरण होना, वह जो कृष्ण भावना का सर्वोच्च स्तर है वह। चैतन्य महाप्रभु जो उनका मोह होता था वो तीन स्तर पे होता था। तीन स्तर पे मतलब वो अपने भक्तों के साथ ही है पर वो कुछ और चीज ऐसे देख लेते हैं जो और कोई देखता नहीं। जैसे कि चैतन्य चरितामृत के अंत में बताया गया है, अंत लीला में, कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ जा रहे थे और वो जगन्नाथ मंदिर की ओर जा रहे थे, उधर से आ रहे थे और अचानक वो भक्तों से बात कर रहे थे, अचानक गायब हो गए, कहाँ चले गए। और देखे चैतन्य महाप्रभु दौड़ रहे और दौड़ते दौड़ते एक पेड़ की ओर जा रहे थे और सब भक्त उनके पीछे दौड़ने लगे। चैतन्य महाप्रभु ऊंचे भी थे और जब कोई व्यक्ति भावनाओं से अगर विचलित हो जाता है तो ऐसी शक्ति आ जाती है कि जब भक्त चिल्ला रहे थे प्रभु प्रभु रुकिए, तो चैतन्य महाप्रभु सीधा दौड़ते हुए चले गए। और जब दौड़ते हुए चले गए तो क्या हुआ था, उनको वहां पे झाड़ियों के बीच में भगवान कृष्ण की दृष्टि हो गई थी और कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे ऐसे उनको लगा और तुरंत कृष्ण का आलिंगन करने के लिए दौड़ते हुए चले गए। दौड़ते हुए जा रहे थे और जब वहां पे पहुंचे तो कृष्ण गायब हो गए। हा चैतन्य महाप्रभु एक तरह से बेहोश हो गए, क्या हो गया ये। और फिर बाद में वो जागृत हो गए तो सब भक्त आ गए, बोले क्या हो गया ये? आप कहाँ दौड़ रहे थे? बोले कि मुझे कृष्ण दिखे, कृष्ण ने मुझे बुलाया और मैं कृष्ण की ओर गया और जैसे ही मैं कृष्ण को आलिंगन करने वाला था कृष्ण गायब हो गए। तो यह एक स्तर का चेतन की उन्मत्तता है, दिव्योन्माद। उसको जो भगवान के स्मरण में जो अलग अलग लीलाएं हैं, रस है, उसका उज्ज्वल नीलमणि नाम का एक सुंदर ग्रंथ है जो रूप गोस्वामी ने लिखा है। भक्ति रसामृत सिंधु जो है वो रसों का एक प्रधान प्राथमिक ग्रंथ है और उसका जो खास करके श्रृंगार रस, माधुर्य रस का जो विस्तारित वर्णन है वो उज्ज्वल नीलमणि में किया है। तो उज्ज्वल नीलमणि में अलग अलग रसों का वर्णन है। तो बताते हैं कि जो एक स्तर क्या है, सब वो सब बाकी भक्तों के साथ ही है पर वो ऐसी चीज देखते हैं जो और कोई देखता ही नहीं है। वह दिव्योन्माद का एक स्तर है। उन्माद मतलब पागलपन, दिव्य मतलब एक वो भौतिक पागलपन नहीं, वह आध्यात्मिक पागलपन है। और तो दूसरा स्तर क्या है दिव्योन्माद का, कि वो न केवल कुछ और चीज देखते हैं पर वह एक अंतरंग स्तर से उस लीला में प्रवेश कर लेते हैं, मतलब बाह्य स्तर से वे बेहोश हो जाते हैं और फिर वो उनका चेतना है कहीं और चले जाते हैं। तो एक बार से चैतन्य महाप्रभु, खास करके चैतन्य महाप्रभु जो अंतिम लीला जो थी उनकी, अंत लीला जो जगन्नाथपुरी में कर रहे थे वो, तो उन्होंने जो आदि लीला में वो कैसे भक्ति शुरुआत की उसका वर्णन आता है और थोड़ा बहुत नवद्वीप प्रचार किया उसका वर्णन आता है। मध्य लीला में सारे भारत भर में कैसे जाकर उन्होंने प्रचार किया उसका वर्णन आता है और अंत लीला में अभी जो प्रचार है उसके दो विभाग होते हैं। एक प्रचार होता है बाहर प्रचार करना, दूसरा है अंदर प्रचार करना। बाहर प्रचार करना मतलब दूसरों को भगवान और भक्ति की ओर आकर्षित करना, अंदर प्रचार करना मतलब कि हम स्वयं भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। और हम भगवान की ओर आकर्षित कैसे होते हैं, प्रधान रूप से हम भक्तों से जब आकर्षित होते हैं तो भक्तों के द्वारा जो आकर्षण, भक्तों की ओर जो आकर्षण होता है उसके द्वारा हम भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। तो प्रसंगम जरम पाशम आत्मना कवयो विदु सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। भागवतम के तीसरे स्कंद में बताया गया है कि जब हमारी आसक्ति किसी भौतिक चीज से होती है तो उससे हम बंधन में फंस जाते हैं, पर वही आसक्ति जब हम भगवान की ओर लगाते हैं और या भगवान के महान भक्तों की ओर लगाते हैं, प्रसंगम अजरम पाशम, जो आसक्ति का पाश है वो कैसा है, अजर है। जरा मतलब बुढ़ापा, तो हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है पर हमारी आसक्तियां बूढ़ी नहीं हो जाती है, वो वैसे के वैसे रहती है। तो इस दुनिया में सब चीजें जो है जो वृद्ध हो, जो पुरानी हो जाती है तो कमजोर हो जाती है, पर आसक्तियां जो है जो पुरानी होती तो और शक्तिशाली हो जाती है। तो प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदु, जो विदु विद्वान लोग जानते हैं कि आत्मा को बंधन में डालती है, पर सैव साधु सुकृतो, वही अगर जो साधु है भक्त है और भक्तों के द्वारा भगवान की ओर वही आकर्षित हो जाती है तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु वास्तव में जो प्रचार है सिर्फ 6 साल प्रचार करते हैं, 24 साल में वो संन्यास लेते हैं, उसके पहले 2-3-4 साल वो मायापुर में ही प्रचार कर रहे होते हैं, फिर 6 साल वो विश्वभर में प्रचार करते हैं और फिर 30वें साल से 48वें साल तक वे नवद्वीप जगन्नाथपुरी में रहते हैं, ऐसा लगता है कोई प्रचार करते हैं नहीं, पर वास्तव में तभी क्या कर रहे हैं, वे अपने सब जो उनको मिलने आते हैं भक्त, उन सब के हृदय में और प्रवेश कर रहे हैं। तो जो भक्तों के साथ का उनका जो आदान प्रदान है, उससे क्या होता है, उससे हमारा जो भगवान से अंतरंग संबंध है वो और बढ़ जाता है। प्रभुपाद जी उद्देश्यामृत में लिखते हैं कि द कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज नरिश्ड बाय द सिक्स फोल्ड लविंग एक्सचेंजेस अमंग द डिवोटीज। जो छह प्रेम के आदान प्रदान होते हैं, दाति प्रतिग्रहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंते भोजयते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम्। तो दाति प्रतिग्रहणाति, कि हम किसी को भेंट देते हैं, वो हमें कोई भेंट देते हैं, चला मदन गोपाल भगवान की चाय। प्रतिग्रहणाति, भेंट लेना, भेंट स्वीकार करना। गुह्यम आख्याति पृच्छति, हम किसी और से कुछ श्रवण करते हैं और हम किसी और का हमारा हृदय सुनाते हैं, कैसे भक्ति में प्रगति करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या चुनौतियां आ रही है, क्या साक्षात्कार हो रहे हैं, इसे हम अभी सत्संग में आ रहे हैं इस तरह से। और भुंगते भोजयते चैव, कि हम भोजन करते हैं और दूसरों, हम प्रसाद दूसरों को खिलाते हैं, हम प्रसाद स्वीकार करते हैं। तो ये जो छह प्रीति के लक्षण हैं, तो इन छह करने से क्या होता है, जो हमारी एक भक्तों के प्रति प्रीति और भगवान के प्रति जो है वो और बढ़ जाती है। तो ये छह जो प्रीति के लक्षण हैं, उनमें से पांचवा और छठा करने के लिए हम बहुत उत्साही रहते हैं, और उसमें से भी छठा नहीं, पांचवा पांचवा छठा क्या है, प्रसाद खाना और प्रसाद खिलाना तो प्रसाद खाने के लिए बहुत उत्साह होता है जब। तो वास्तव में अच्छा है, प्रसाद भी भगवान का ही रूप है, पर वह भगवान का इकलौता रूप नहीं है इसीलिए हमें प्रसाद की ओर आकर्षित होना अच्छा है, प्रसाद के और बाकी भगवान के जो रूप है, कीर्तन है, प्रवचन है वगैरह, उन सबकी सेवा है, उन सबकी ओर भी आकर्षित होना है। तो भगवान जो है अंत्यलीला जो है उसमें क्या दिखाते हैं, अंत्यलीला में कैसे भक्तों के समूह में रहकर ये षड्विधम प्रीति लक्षण, ये छह प्रेम के आदान प्रदान कैसे करने हैं, इसका वो हमें प्रदर्शन करते स्वयं के उदाहरण के द्वारा। और जो कृष्ण भावनामृत संघ है उसके विकास के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि भक्तों में प्रेम का आदान प्रदान हो। और चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन के 18 साल में यह दिखाते हैं, आखिरी 18 साल में। तो यह इसके द्वारा यह कितना महत्वपूर्ण है कि भक्तों में आदान प्रदान स्नेह और आदर से भरा हुआ हो। उसके द्वारा जो चैतन्य महाप्रभु जब अपने भौतिक भगवतधाम लौट जाते हैं, तो वास्तव में केवल 48 साल रहते हैं वो। और साधारणतया कैसे होता है कि अगर कोई बड़ा रईस व्यक्ति है, बड़ा जागीरदार है, बहुत अमीर व्यक्ति है, और वह जब उसकी मृत्यु होती है, तो फिर उसके पुत्र होते हैं, पुत्रिया होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो सब में अभी झगड़ा होने लगता है कि ये जायदाद मेरी है, ये मेरा है, ये मेरा है। और कई बार उन्होंने जो भी चालू किया होता है वो सब उद्ध्वस्त हो जाता है झगड़ों के कारण। झगड़े भी नहीं हुए तो भी क्या होता है, वो चालू रखने वाला कोई रहता नहीं है, कि सब वो भाव नहीं रहता है। तो इसीलिए क्या करते हैं लोग, अपना विल लिखते हैं, वारिस लिखते हैं कि ये हिस्सा इसके लिए, ये हिस्सा इसके लिए, ये हिस्सा इसके लिए, और बड़े ध्यान पूर्वक सब कुछ लिखते हैं। और कई बार उसके बावजूद भी बहुत सारे झगड़े होते हैं, पर चैतन्य महाप्रभु जो थे वो केवल 48 साल तक रहे, और जब वो अपनी लीला उन्होंने अंत की तो एकाएक लीला अंत कर दी उन्होंने। तो ऐसे भक्तों को थोड़ा अंदाजा रहा था, पर किसी को पता नहीं था, अचानक भगवान ने अपनी लीला अंत कर दी। और साधारणतया अगर किसी ने कोई संस्था चालू की है, कोई संघ चालू किया है, तो उसको आगे बरकरार रखने के लिए कई चीजें करनी पड़ती है। एक तो वो संस्था अच्छी तरह से बनानी चाहिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, फिर अपनी जो इच्छाएं हैं वो स्पष्ट रूप से लिखने के लिए कोई ग्रंथ लिखने चाहिए, अपना विल होना चाहिए, और फिर साथ साथ जो उनके बाद जो नेता बनने वाले हैं वो नाम लिखने चाहिए, इनहेरिटर जो कहते, वारिस जो थे। तो जो संस्था होनी चाहिए, ग्रंथ होने चाहिए, और फिर वारिस होने चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु इन तीनों से कुछ भी नहीं किया, ना ग्रंथ लिखे, ना उन्होंने अपने कोई मेरे बाद कौन नेता बनने वाला ऐसा कुछ लिखा, और न ही जब चैतन्य महाप्रभु थे तो तभी कोई संघ नहीं था, जो भी आते थे प्रेरित होते थे, भक्ति करते जाते थे, चैतन्य महाप्रभु कुछ संघ नहीं किया। तो फिर भी जो 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 गौड़िया वैष्णव भक्ति है वो कैसे बरकरार रही, क्योंकि ये सब जो है ग्रंथ लिखना, वारिस नेमना, संस्था बनाना, ये सब बाह्य है। असली जो जोड़ होता है वह हृदय का जोड़ होता है, और वह जो हृदय का जोड़ होता है वह श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो षड्विधम प्रीति लक्षणम, छह प्रकार के प्रीति जो है थे, वह बहुत प्रचुर मात्रा से अपने भक्तों के साथ की थी, और उसके द्वारा वह अपने भक्तों के हृदय में वह प्रस्थापित हो गए थे, और उसके कारण वह सब भक्ति करते रहे और कृष्ण भावना का विस्तारित होते रहा। तो ये चार वैष्णव संप्रदाय है, दूसरे धर्म है, किसी भी और ऐसे इसमें ना इस तरह से न कि शिष्य कौन कौन शिष्य है, नेता बने के बताया गया है, ग्रंथ नहीं लिखे गए हैं, कुछ नहीं किया गया, फिर भी चालू रहना यह एक ऐतिहासिक रूप से चमत्कार है। और चमत्कार क्यों हुआ? क्योंकि वह हृदय का बंधन था। श्री प्रभुपाद जी को कई बार पूछा जाता था कि मुझे कि आपके बाद आपके संस्था को कौन चलाएगा, तो प्रभुपाद जी ने क्या जवाब दिया, जो इच्छा होगी वो चलाएंगे, जो जो चाहेंगे वो चलाएंगे। बोले क्या मतलब? तो प्रभुपाद जी बोले कि जो चाहेंगे चलाएंगे मतलब क्या, कि प्रभुपाद जी ने स्पष्टीकरण डायरेक्टली नहीं किया पर उनके जीवन से किया। उन्होंने एक बार जब वो मायापुर में आए थे तो उनके कुछ गुरु भाई थे, वो थोड़े उनकी निंदा कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इनको कुछ प्रभुपाद जी का संग नहीं मिला था, भक्ति सांसव ठाकुर का संग नहीं मिला था, वो उनको भक्ति सांसव ठाकुर जैसे करना था कैसे करना था उनको पता नहीं है, थोड़ी निंदा कर रहे थे वो, कि कई भक्ति सांसव को जब लीला कर रहे थे तो प्रभुपाद जी उनके इतने घनिष्ठ शिष्य नहीं थे, क्योंकि प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, अपने अपने पेशे में थे वो, तो बोल रहे थे कि हमें भक्ति सांसव ठाकुर की इच्छा है और पता है पर इनको इतना पता नहीं है। तो भक्ति सांसव ठाकुर ने कहा कि जो ऐसे प्रभुपाद जी ने कहा कि जो ऐसे कह रहे हैं उनको आप जाके पूछिए कि मुझसे अधिक किसने ग्रंथ लिखे हैं, मुझसे अधिक किसने मंदिर बनाए हैं, मुझसे अधिक किसने और शिष्य बनाए हैं। तो अभी कोई कह सकता है कि तो बड़े गर्व की बात कर रहे हैं, मेरे इतना किसने किया है, पर ये प्रभुपाद जी बोले, गंभीर हो गए, प्रभुपाद जी बोले कि I have inherited the legacy of my spiritual master, कि मेरे गुरुदेव की वारिस मुझे मिली है। अभी वारिस क्या मिली थी? जो गौड़िया मठ बड़ा विशाल संस्था थी, पर जो विशाल संस्था जो थी वह लगभग उध्वस्त हो गई भक्ति सांसव ठाकुर जब चले गए, तो उसके बाद में क्या मिला भक्ति सांसव ठाकुर प्रभुपाद को? न तो उनको कुछ धन सामग्री मिली प्रचार करने के लिए, न कोई मंदिर मिला, न कोई सहयोगी मिले, प्रभुपाद जी ने अकेले अमेरिका गए। तो फिर क्या वारिस थी? वो वारिस जो थी वह प्रचार करने की इच्छा, द डिजायर टू सर्व इज द रियल लेगेसी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर टू द डिसाइपल। शिष्य गुरु शिष्य को क्या प्रदान करते हैं? वह सेवा करने की इच्छा। और हमें हमारे गुरुदेव का संग मिले ना मिले, अगर व्यक्तिगत रूप से संग मिले ना मिले, पर अगर हमें उनकी सेवा करने की इच्छा जागृत हो गई है तो उनका आशीर्वाद हमें मिल गया है। तो कई बार तो प्रभुपाद जी का कहने का भाव क्या था कि जैसे मुझे मेरे गुरुदेव से भौतिक कुछ भी नहीं मिला, पर जो उन सेवा का भाव, प्रचार का भाव उनसे मिल गया और उससे मैं सब कुछ किया। ठीक उसी तरह से प्रभुपाद जी जीबीसी वगैरह बनाए महत्वपूर्ण है, पर कहते कौन आपके बाद संस्था चलाएंगे? जो मेरे जो सेवा का प्रचार का इच्छा है, जो उसको बरकरार रखेंगे वो चलाएंगे उसको। तो कई बार हमें भी हमारे जीवन में लग सकता है मुझे भक्ति करने की इच्छा है, सेवा करने की इच्छा है, मुझे सुविधाएं नहीं मिल रही है, पर सबसे महत्वपूर्ण जो भक्ति के लिए जरूरत है वो सुविधा नहीं है, वह है इच्छा। अगर हमारे हृदय में सेवा करने की इच्छा है, प्रचार करने की इच्छा है, तो उस इच्छा से बाकी सब कुछ प्रकट हो जाएगा। कई बार क्या होता है, हम जब प्रचार करने की या सेवा करने की इच्छा होती है उसमें कुछ समस्याएं आ जाती है, तो वो समस्याओं से हम इतने वी बिकम प्रॉब्लम कॉन्शियस इंस्टेड ऑफ कृष्णा कॉन्शियस। तो हम क्या करते हैं, ये समस्या क्यों आ रही है, वो समस्या क्यों आ रही है, वो समस्या क्यों आ रही है, वो समस्या क्यों आ रही है, और फिर हम हमारी जो भगवान की सेवा करने की इच्छा है उसको छोड़ देते हैं। पर अगर भगवान की सेवा करने को हम जोड़ के रखते हैं तो क्या होता है, वो समस्या है वो समस्या आएगी और जाएगी। ऐसे पहले अगर आप रामायण सीरियल देखते होगे तो क्या वो थोड़ा पुराना टेक्नोलॉजी था, तो क्या इधर से राम एक तीर मार रहे हैं, रावण एक तीर मार रहे हैं, तो इधर से एक तीर आता है, इधर से एक तीर आता है, जिसका तीर ज्यादा शक्तिशाली है वो तीर वैसे का वैसे रहता है, दूसरा तीर नीचे गिर जाता है। तो वैसे ही क्या होता है, तो इधर से हमारी हमारी सेवा करने की इच्छा आती है और उधर से समस्या आ जाती है, तो क्या होता है दोनों का टक्कर हो जाता है, तो हमारी इच्छा गिर जाती है। पर प्रभुपाद जी का सेवा करने का इच्छा इतना सुदृढ़ था कि कितनी बड़ी समस्या क्यों नहीं आए, वो समस्या गिर जाती थी और प्रभुपाद जी आगे चलते रहते थे। तो ठीक उसी तरह से समस्या इस जीवन में सबके जीवन में आएगी, पर क्या है समस्या आएगी तो कभी कभी ऐसे हो सकता है समस्या कारण हमारी सेवा कम हो जाए, सेवा में थोड़ी गति आ जाए, पर हमारे सेवा का इच्छा अगर हम बरकरार रखेंगे तो भगवान बराबर योजना बना देंगे सेवा करते रहे, सेवा हमको नया नया मौका मिल जाएगा सेवा करने के लिए, कोई और बड़ी सेवा मिल जाएगी। और आध्यात्मिक प्रगति किसी भी भौतिक परिस्थिति से रुक नहीं सकती है, वो सेवा करने का स्वरूप बदल सकता है पर आध्यात्मिक प्रगति जरूर चालू रहेगी। तो यहाँ पे मैं इसे कहने का संदर्भ यह था कि चैतन्य महाप्रभु उनके आखिरी लाइन में उन्होंने क्या किया, षड्विधम प्रीति लक्षणम, वो जो उन्मत्त हो जाते थे, उन्मत्त होकर वो ऐसी लीलाएं करते थे कि सब भक्त थे उनसे पूरा आकर्षित हो जाते थे। प्रताप रुद्र महाराज जब चैतन्य महाप्रभु उन्मत्त होकर जगन्नाथ रथ यात्रा में नृत्य करते थे तो वह क्या हो रहा था, जगन्नाथ रथ यात्रा का जो लीला है वह बहुत ही दिव्य लीला है। मैं ये सब इसलिए ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, हम चैतन्य चंद्रोदय नाटक में अलग अलग शस्त्र कैसे निष्फल हो रहे बता रहे, तो मोह के बारे में चर्चा कर रहे, तो मोह में भौतिक मोह और आध्यात्मिक मोह उसके हम चर्चा कर रहे। तो आध्यात्मिक मोह में अलग अलग प्रकार के मोह है, मैं बोले कि व्यक्ति यहीं पे है पर दूसरा कुछ देख रहा है, दूसरा भाव जो है चैतन्य महाप्रभु वहीं पे है पर वह न केवल दूसरा कुछ देखते हैं पर इस भौतिक स्तर पे वे ही इज नो लॉन्गर अवेलेबल है, वो यहाँ पे रहते ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वे बेहोश हो जाते हैं यहाँ पे। तो ऐसे कई बार होता था कि वो जब लीला कर रहे हैं और एकाएक वो जब एक जा रहे थे और जब जा रहे थे तो उनको भगवान कृष्ण की वेणु सुनाई दी और वह एकदम गायब हो गए और भक्तों ने देखा कहाँ है चैतन्य महाप्रभु, तो एक कहीं कोने में बेहोश होकर गिरे हुए, और ये बेहोश होकर गिरे हुए हैं और भक्त भी चैतन्य महाप्रभु पानी डाल रहे हैं, उनको होश में लाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको लगा चैतन्य महाप्रभु अभी हमेशा के लिए चले गए, क्या हो रहा है, वो चिंतित हो गए। पर उन्होंने देखा कि थोड़ा सा सांस आ रहा है और फिर सोचा है कि ये चैतन्य महाप्रभु जो साधारण भौतिक स्तर पर अगर कोई बेहोश हो जाता है तो भौतिक उपाय काम करेगा, क्या है भौतिक स्तर से बेहोश हो गए तो पानी वगैरह डालो होश में आ जाएगा, पर आध्यात्मिक स्तर से बेहोश हो गए पानी डालने से कुछ नहीं होने वाला है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आध्यात्मिक उपाय करना पड़ेगा। आध्यात्मिक उपाय क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे जोर से कीर्तन करने लग गए और वो भक्त देख रहे थे, कीर्तन कर रहे थे और चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे, और अचानक चैतन्य महाप्रभु उठ गए, कृष्ण कहाँ हो तुम, कहाँ आ गए, मैं कहाँ, कृष्ण कहाँ चले गए, और फिर सब देखने भक्त यहाँ पे आ गए, मैं भगवान की कृष्ण लीला में प्रवेश कर रहा था और तुमने मुझे यहाँ पे खींच के क्यों लेके आ गए। तो अभी पहले तो भक्त चिंतित थे कि चैतन्य महाप्रभु क्या हो गया, चैतन्य महाप्रभु वापस आ गए, आनंद होने के जब आनंद हो रहा था पर आनंद प्रकट होने के पहले चैतन्य महाप्रभु क्रोध देख के वो भयभीत हो गए, अभी क्या कर दिया आपने, बोले प्रभु हम सोच रहे थे आपको कुछ हो गया है क्या, अभी मुझे कुछ हो गया, चैतन्य महाप्रभु बोले मैं कृष्ण की लीला में था और तुम मुझे यहाँ से खींच के लेके आ गए। और चैतन्य महाप्रभु जब इस तरह से अंतरंग लीला करते तो स्वरूप दामोदर और रामानंद राय उनके बहुत अंतरंग पार्षद थे। तो जो साधारणतः हम पंचतत्व का चित्र देखते हैं तो ये पंचतत्व में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर और कौन, गदाधर पंडित, ये जो पंचतत्व का जो चित्र है यह पंचतत्व नवदीप का चित्र है। साधारणतः हम जब भी विग्रह होता है तो हम चैतन्य महाप्रभु को नवदीप चंद्र के रूप में पूजते हैं और वो इसीलिए उनके बाल भी है, वो सन्यासी के रूप में नहीं है और उनके तो पार्षद पंचतत्व थे ये। पर चैतन्य महाप्रभु पुरी में थे तो ये जो पंचतत्व में के सब सदस्य लगभग वो नवदीप में थे, नित्यानंद प्रभु बार बार आते थे और रहते थे पर अधिकांश रूप से वे पुरी वो है नवदीप में थे, इसलिए पुरी की लीला में उनके अंतरंग पार्षद जो थे रामानंद राय और स्वरूप दामोदर। तो कैसे है कि जब नवदीप में चैतन्य महाप्रभु थे अधिकांश रूप से वे कृष्ण के वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में लीला कर रहे थे, पर वे युग धर्म का प्रचार कर रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु जो है श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। तो जो राधा भाव है उनका, हाउ मच टाइम, तो लिटिल मी टाइम टिल व्हाट टाइम, तो जो जो राधा भाव है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो है वो कृष्ण भी है राधा रानी भी है, उनका एक साथ में रूप है। पर कैसे है, बाह्य रूप से उन्होंने श्री राधा रानी का जो वर्ण लिया है, अंतरंग से राधा रानी का भाव लिया है, पर वो कृष्ण ही है। द्युति सुवलितम नवमी अधा भाव स्वरूपम, क्या क्या उन्होंने, नवमी कृष्ण, राधा द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, राधा रानी का उन्होंने भाव लिया है और उनका वर्ण लिया है, पर वो कृष्ण है। तो जब तक वे नवदीप में थे वो भले ही कीर्तन कर रहे थे और रस कीर्तन का रस आस्वादन कर रहे थे, पर नवदीप लीला में वे राधा रानी का भाव प्रकट नहीं करते अधिकांश रूप से डायरेक्टली। नवदीप रूप, नवदीप में वो क्या है, कीर्तन कर रहे हैं, भक्त की भूमिका कर रहे हैं, पर कभी कभी वो दिखाते हैं कि मैं भगवान हूँ और सब उनकी पूजा करते हैं, वो विश्वरूप दिखाते हैं, जगाई मदाई का उद्धार करते हैं। और इस तरह से जो राधा कृष्ण के साथ में जो राधा कृष्ण का संगम है चैतन्य महाप्रभु, आपने चित्र देखा होगा, एक एक साइड में राधा रानी, एक साइड में कृष्ण है, बीच में चैतन्य महाप्रभु है, दोनों साथ में आ गए। तो नवद्वीप में अधिकांश रूप में कृष्ण के भाव में वो लीला कर रहे हैं, कृष्ण या तो स्वयं कृष्ण खुद को दिखाते हैं, अपनी विभूति दिखाते हैं, या अधिकांश रूप से एक कृष्ण एक भक्त के रूप में आए हैं। पर जब वो रामानंद राय से मिलते हैं, जो मध्य लीला का आई थिंक आठवां अध्याय है, वो रामानंद राय के संग से क्या होता है, श्री चैतन्य महाप्रभु के अंदर जो राधा रानी है वो प्रकट होने लगती है। और क्योंकि रामानंद राय कौन है, वह विशाखा देवी है। चैतन्य महाप्रभु के लीला में जो राधा रानी की लीला में गोपियां हैं उनमें से यह एक गोपी है। तो अगर हम देखते हैं श्रीवास ठाकुर, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, ये इनमें से कोई भी डायरेक्टली गोपी नहीं है, वो सब जो नवद्वीप में आते हैं जीवन का, जीवों का उद्धार करने के लिए आए हैं। दक्षिण भारत में प्रचार कर रहे हैं तो भी वो जीवों का उद्धार कर रहे हैं, वो कृष्ण एक भक्त के रूप में आए। पर जब उनको अपनी जो बहुत ही घनिष्ठ गोपिका जो है रामानंद राय, जो विशाखा देवी, उनका संग मिलता है तो वो राधा भाव प्रकट होने लगता है उनसे। और फिर जब वो उनसे कहते हैं ललित विशाखा देवी से कि कृपया, रामानंद राय से कि कृपया आप पूरी में आ जाओ और पूरी में हम साथ में रहेंगे, तो जब साथ में आते हैं तो उनकी जो पूरी पूरी की लीला, पूरी पूरी की जो लीला है वह राधा रानी के भाव में है। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु अधिकांश रूप से वो प्रेम में उन्मत्त रहते हैं, और जैसे राधा रानी जब प्रेम में उन्मत्त होती है तो वह उसे दुनिया का कोई और सुधी बुधी ही नहीं है, और सिर्फ कृष्ण के स्मरण में है। पहले भी चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के स्मरण में रहते हैं, पर तभी वह इस तरह से कृष्ण का स्मरण करते हैं, प्रचार करते हैं, कीर्तन करते हैं और दुनिया का उद्धार भी करते हैं। पर यहाँ पे वह जो है पूरी में वो राधा रानी का भाव पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, और वो जब खास करके राधा रानी का कौन सा भाव, जब चैतन्य, जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए और राधा रानी अकेली है वृंदावन में और कृष्ण का स्मरण करे, आई दीन दयाद नाथ है मथुरा नाथ कदावलोक्य से हृदयम त्वदलोक का कातरम दैत ब्राह्म्य हम, वो कहते हैं आई दीन दयाद्र नाथ है, ये राधा रानी का भाव है, वो कह रहे हैं कि हे प्रभो, हे कृष्ण, आप दीन और दयाद्र लोक नाथ है, तो हम सब दीन है, पर आप आपके नाम के अनुसार दीनों का नाथ छोड़ बनने के छोड़कर क्या किया आपने, मथुरा नाथ कदावलोक्य से, आप मथुरा चले गए हैं और मथुरा के नाथ बन गए हैं, हम सब आपके विरह में दीन हो गए हैं, हमें छोड़कर आप मथुरा में चले गए, मथुरा के नाथ बन गए हैं, कदावलोक्य से हम कैसे और कब आपको देख पाएंगे, हृदयम तदलोक कातरम, कि जब हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, अलोक कातरम, जो हृदय जो है, अलोक मतलब ना देखना, आपको न देखने के कारण जो हृदय है वो कंपन हो रहा है, दैत भ्राम्य किम करोम्य हम, अभी मैं क्या करूं। राधा रानी को बिल्कुल पता नहीं है कि मैं क्या करूं। वह जो विरह का भाव है वह इतना इस तरह से उनको अंदर से जलाता है कि कृष्ण का संग मुझे कैसे मिलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु वह भाव स्वीकार कर रहे हैं। और यहाँ पे जब ये भक्त उनको लेके आते हैं वापस, वो राधा रानी के भाव में थे और राधा रानी के भाव में वो वृंदावन में पहुंच जाते हैं और कृष्ण का दर्शन करते हैं, और कृष्ण का दर्शन करते कृष्ण से मिलन करने वाले हैं, और तभी भक्त कीर्तन करते हैं। और भक्त कीर्तन करते हैं तो जब कृष्ण से मिलन होने ही वाला है और खींच के लेके आते हैं। तो इसे चैतन्य महाप्रभु तो जाते बोले, मैं कृष्ण से मिलन करने ही वाला था, तुमने मुझे क्यों खींच के लेके आ गए। तो फिर तभी रामानंद राय और जो उनके बाकी पार्षद है खास सरू दामोदर, वो ललिता और विशाखा के रूप में साधना करते हैं। और वो कहे वो अलग अलग से श्रीमद् भागवतम से बहुत सुंदर श्लोक है गाते हैं, हरिनाम का कीर्तन करते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु को भले ही कृष्ण का संग नहीं हो रहा है, कृष्ण का ध्वनि के रूप में संग होता है और उससे उनको सांत्वना मिलती है। और जो तीसरा जो है, जो दिव्योन्माद का जो लक्षण है, वह क्या है? वह न केवल चैतन्य महाप्रभु ऐसे कुछ देखते हैं जो अभी दिख नहीं रहा है, न केवल वो यहाँ से दृष्ट हो जाते हैं, उनकी चेतना ऐसे लगता है कि शरीर में है ही नहीं वो, पर उसके साथ साथ उनका शरीर बहुत ही विस्मित रूप से परिवर्तित हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु जो थे वह ऐसे दिव्य उन्माद के कारण उनके सारे शरीर के जो अंग थे उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह यहाँ पे नहीं है, पर अगर है तो हम देखते हैं तो सुभद्रा देवी के जो हाथ है पूरे अंदर चले गए, जगन्नाथ जी के भी हाथ का आगे का भाग अंदर चला गया, यहीं पर इतना ही सिर्फ है। तो क्यों है वो, कैसे होता है कि साधारणतया अगर हम किसी चीज़ से बहुत आकर्षित हो जाते हैं तो क्या होता है, उसी चीज़ में हम पूरी तरह से एकाग्रित हो जाते हैं और हम दूसरी चीज़ की किसी भी चीज़ की ओर ध्यान नहीं देना चाहते। तो इसलिए क्या होता है, हम बाकी जितना एकाग्र होते हैं तो बाकी सब चीज़ों से हमारा ध्यान पीछे होने लगता है। तो हम हमारा ध्यान जो होता है ना केवल आंखों से देखते हैं, पर हमारे हाथों से भी हम कुछ स्पर्श करते हैं, पैरों से भी कुछ स्पर्श करते हैं। तो जितनी एकाग्रता चाहिए उतनी क्या है, बाकी जो भी वो एकाग्रता से व्यत्यय लाता है उससे हम दूर होते हैं। जैसे लोगों को अगर पिक्चर देखना है तो क्या करते हैं, पहले लाइट बंद करते हैं। क्या होता है वहां पे, मोह में जाना है तो सत्य को भूलना चाहिए पहले। तो यह एक विकृत प्रतिबिंब है, पर वास्तव में क्या है, जब भक्त भगवान की लीला में एकाग्र होना चाहते हैं तो फिर वो क्या चाहते हैं कि सब जो व्यत्यय है वह निकल जाए। तो इसलिए गोपिया कहते हैं कि जो आंखें हैं हमारी, वह जो ब्रह्मा जी कितने मूर्ख है, उन्होंने ऐसी आंखें बनाई हैं कि वो बंद होते रहती बीच बीच में, और बंद होते रहते हमको भगवान को दिखाई नहीं देता है। तो आनंद जब बताते हैं कि ये बंद, जब हमारे एक जब पलक झपकती है और आंखें बंद हो जाती है, तो वो एक बार जब पलक झपकती है तो उस एक पलक के झपक में मान लीजिए हमारे हृदय में हजारों भूकंप हो जाते हैं कि कृष्ण का दर्शन हमें नहीं हो रहा है। तो क्या जब ध्यान होता है तो तभी क्या, जब ध्यान होता है तो किसी भी और चीज का दर्शन व्यक्ति किसी और चीज के ध्यान में व्यत्यय नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उसके कारण क्या होता है, जो सारे शरीर के अंग है वो सब अंदर आ जाते हैं। तो क्या, हाथ भी किसी को स्पर्श न करे, पैर भी किसी को स्पर्श न करे सिर्फ, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आप देखें तो आंखें जो है एकदम बड़ी हो गई है, एकदम बड़ी आंखें हो गई है। क्यों? क्योंकि बड़े आंखों से वो भगवान का जो रूप है, जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है वो ब्रजवासियों के लीला का श्रवण कर रहे हैं, ब्रजवासियों का दर्शन कर रहे हैं और बाकी सब भूल गए। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु जब लीला करते हैं तो क्या होता है, वह कभी कभी न केवल वृंदावन लीला में प्रवेश कर लेते हैं पर साथ साथ उनका जो शरीर है परिवर्तित हो जाता है। तो एक बार जब देखते हैं भक्त सब जगह, चैतन्य महाप्रभु अपने कमरे में होते हैं, अचानक रात को गायब हो जाते हैं। उसे कहाँ गए चैतन्य महाप्रभु, सब जगह ढूंढ रहे कहीं भी नहीं मिलते। और अंत में वो देखते हैं कि एक गौशाला में चैतन्य महाप्रभु है और वो एक कूर्म के रूप में हो गए। जो कूर्म होता है, कूर्मो अंगानी सर्वशा भगवगीता में कहते हैं कि सारे कूर्म के जो हाथ पैर होते हैं वो अपने अपने शरीर के अंदर लेता है। तो वैसे चैतन्य महाप्रभु का सारा जो शरीर था वो अंदर चला जाता है। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि वो जो दिव्य लीला का दर्शन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उसमें सहभागी हो रहे हैं, पूरी तरह से उसमें सहभागी होना चाहते हैं, और इसलिए कोई भी व्यत्यय नहीं चाहते, इसीलिए शारीरिक स्तर पे भी परिवर्तन हो जाता है। और कभी कभी शारीरिक स्तर पे जो परिवर्तन होता है दूसरे पद्धति का होता है। क्या होता है कि उनका शरीर इतना लंबा हो जाता है कि जो हड्डियां है, एक हड्डी और दूसरी हड्डी अलग हो जाती है, और उनको जोड़ने के लिए सिर्फ क्या रहता है, जो स्किन, स्किन इज व्हाट, त्वचा जो है, त्वचा से जुड़ा रहता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो संवेदन है वो स्नायु जाते हैं, वो जो हड्डियां अलग हो जाएगी तो संवेदन जाएगी नहीं, तो फिर क्या होगा, अंतरंग रूप से पूरी तरह से भगवान के स्मरण में रहते हैं वो। तो ये जो चैतन्य महापुरुष जो दिव्योन्माद दिखाए, तो ये जो वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत के अंतलीला में एक बार आता है कि चैतन्य महाप्रभु अचानक गायब हो जाते हैं और सब भक्त उनको ढूंढ रहे हैं, कहाँ है चैतन्य महाप्रभु, कहाँ है चैतन्य महाप्रभु, और कहीं भी दिखते नहीं है। और फिर स्वरूप दामोदर वो कहते हैं कि सब आप इधर जाओ ढूंढो, आप उधर जाओ ढूंढो, और वो सागर के तट में जाते हैं। और उनको भय क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु सागर की ओर चले जाएंगे और सोचेंगे ये सागर जो है वह यमुना है और उसमें कूद जाएंगे, और क्योंकि वे अगर बेहोश हो जाएंगे तो तैरेंगे भी नहीं तो क्या हो जाएगा, इसीलिए वो सागर के चारों सागर की ओर जाके ढूंढ रहे होते। और तभी देख भक्तों को पूछते, आपको कुछ दिखा, नहीं मुझे कहीं चैतन्य महाप्रभु नहीं दिखे, पर सिर्फ एक मछुआरा दिखा, अरे मछुआरा पागल हो गया ऐसे लगता है, पागल हो गया है, पर महाप्रभु कहीं दिखे नहीं, कहाँ है वो पागल मछुआरा मुझे दिखा बताओ, नहीं पर वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु नहीं है, नहीं मुझे पागल मछुआरा कहाँ है बताओ। तो फिर उसके पास लेके जाते हैं, तो वो देखते हैं कि वो जो पागल मछुआरा है कृष्णा 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 कह रहे, कृष्णा कहते जा रहे, कृष्णा कहते जा रहे। तो वो कहते हैं तो ऐसे इस तरह से पागल क्यों हो गया ये, तो बोलते क्या हुआ, तो बोलते कुछ बोले कृष्णा 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 बोलते जा रहे, क्या हुआ कृष्णा 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 क्या हुआ। तो फिर वो थोड़ा शांत हो जाता, बोलते कि मैं जब यहाँ पे मछली पकड़ने जाता हूँ तो मुझे लोगों ने बताया कि इस इलाके में कुछ भूत रहते हैं, तो इसीलिए मैं जब मछली पकड़ता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मेरे हाथ में वो मछली पकड़ने का जाला होता है, मुंह में नरसिंह का मंत्र होता है, तो नरसिंह का मंत्र सुन के जो भूत चले जाते हैं। पर आज पता नहीं मुझे ऐसा भूत लग गया है, जितना मैं नरसिंह का मंत्र बोलता हूँ वो भूत और चल जाता है। तो मैंने सुना था कि जो कृष्ण मंत्र है नरसिंह से अधिक है शक्तिशाली है, इसीलिए मैं कृष्ण मंत्र बोल रहा हूँ, पर ये भूत का पकड़े और जा रहा है, और बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो फिर सर्वदाम सुनते हैं, सुचा करने लगते हैं, तो ये कब से चालू हो गया ये, कि वो बोले कि मैं जब मछली पकड़ने गया तब ठीक था, अभी सब मैं सीधा सा बोल रहा हूँ, पर वो जो मछुआरा बोल रहा होता है वो बीच में ही कृष्ण कृष्ण बोलते जा रहा है और फिर कुछ बोल रहा है, क्योंकि खुद को शांति भी नहीं आ गया है, शांत नहीं है, वो नशा चढ़ गया उसको। मतलब बोलते कब से चालू हो गया, कि मैं जब गया सागर में मेरे नाव में तो सब कुछ ठीक था, पर बाद में मैं जब मैं गया वहाँ पे, मैंने जब मेरे जाला फेंका था तो तभी मैंने देखा कि अचानक जाला बहुत वजनदार हो गया, तो मैं सोचा कि बहुत बड़ी मछली पकड़ ली मैंने आज। और फिर जब मैं मछली को खींच रहा था, मैं बाहर देखा कि एक बहुत ही विचित्र रूप था वो, और जैसे ही मैंने वो रूप को बाहर निकाला और स्पर्श किया तो वो भूत मुझे लग गया। तो लगता है वो व्यक्ति मर गया था, उसकी लाश से भूत निकला और मुझ में आ गया, तो क्या करूं, मुझे लगता है मुझे जो भूत निकालने वाला कोई व्यक्ति होता है उसके पास जाना पड़ेगा मुझे। तो सरोज दामोदर बोले समझ गया क्या हो गया, बोलते कि मैं भूतों को निकाल सकता हूं। अच्छा कैसे निकालते, तो थप्पड़ मारते जोर से, क्या हो गया, बोले कि वो जो तुम ये जो कृष्ण मंत्र है शांति से कृष्ण मंत्र तुम बोलते रहो, और वो जो व्यक्ति है उसको पकड़ा था वो कहाँ है वो मुझे बताओ तुम पहले। नहीं 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 वो तुमको भी लग जाएगा, मैं तुमको नहीं बताऊंगा, मेरा नाश हो गया तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। नहीं नहीं बोलते कुछ कोई बात नहीं, तुम बताओ वो कोई मृत व्यक्ति नहीं है, वो महाप्रभु है। देखिए नहीं मैं महाप्रभु को बहुत बार दर्शन किया है, यह व्यक्ति महाप्रभु नहीं है, बिल्कुल अलग ही व्यक्ति है। ये बोलते नहीं, यह जो व्यक्ति है जब दिव्योन्माद हो जाता है तो इस तरह से शरीर परिवर्तित हो जाता है। नहीं ये महाप्रभु हो ही नहीं सकते, तुम मुझे वहां पे लेके जाओ। बोले जब तुम वहां पे लेके जाओगे महाप्रभु, जब पुनः बाह्य चेतना में आएंगे तब तुम्हारा ये भूत चला जाएगा। लेके जाओगे नहीं, हाँ ठीक है लेके जाता हूँ। तो फिर जब लेके जाते हैं वहां पे चैतन्य महाप्रभु देखते हैं तो उनका जो शरीर का रंग पूरा बदल गया है, वो जो अभी तक वो जो मछली का जाला है उसके अंदर चैतन्य महाप्रभु है। और फिर भक्त जोरों से कीर्तन करते हैं और फिर अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान की जो रासलीला है, रासलीला में जल क्रीड़ा समासक्त गोपी वस्त्र पहार कहा, तो जल क्रीड़ा जो कर रहे होते कृष्ण और गोपियां, चैतन्य महाप्रभु उस लीला का स्मरण कर रहे हैं, उस लीला में अंतरंग हो गए हैं वो, और वो उस लीला से बाहर आ जाते हैं। और जब वो देखते हैं भक्त, सब भक्तों को देखते हैं और सब भक्त बहुत चिंतित है, और चाहे पहले चैतन्य महाप्रभु थोड़े क्रोध हो जाते हैं, पर वहां पे वो देखते हैं कि उनके जो वरिष्ठ है परमानंदपुरी, ये जो परमानंदपुरी जो है ईश्वरपुरी के ही के स्तर पे है, उनके गुरु के समान है, तो पहले तो क्रोध हो जाते हैं, पर परमानंदपुरी को देखते हैं तो बोलते हैं आचार्य आप यहाँ पे क्यों आए हैं, तो चैतन्य तो परमानंदपुरी हंसते हैं, मैं तुम्हारा नृत्य देखने के लिए आया था। तो फिर यह देख के चैतन्य महाप्रभु शर्मिंदा हो जाते हैं और फिर वो बाह्य चेतना में आ जाते हैं और फिर बोलते क्या हो गया, फिर सरुदामन उनको सारी कहानी बताते हैं। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाओं से जो प्रेम की पराकाष्ठा है उसका एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्थापित किया है। और जो कवि कर्णपुर जो चैतन्य चरणोदय बताते हैं कि ये जो उन्मत्तता है, ये जो पागलपन है, भौतिक पागलपन व्यक्ति को भवबंधन में फंसाता है, चैतन्य महाप्रभु का जो उन्मत्तता जो पागलपन है वह भवबंधन से निकाल देता है व्यक्ति को। वो कहते हैं कि वास्तव में वही जो पागलपन था वही एक तरह से श्री प्रभुपाद जी के पास था। भौतिक दृष्टि से देखे गए तो कोई व्यक्ति 70 साल की उम्र में अकेला परदेश, ऐसे देश में जो कभी गया भी नहीं है, बिना किसी पैसे के जाना, यह कोई बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण नहीं है, व्यक्ति को हम पागल कहेंगे। पर वह जो पागलपन है वह दिव्य पागलपन है, और इस दिव्य पागलपन में भगवान की सारी शक्ति सामग्री सम्मिलित होती है। और प्रभुपाद जी कहते थे कि द परफेक्शन ऑफ आवर लाइफ इज टू बिकम मैड फॉर कृष्णा, कि हमारे जीवन का परिभाषा क्या है, परिपूर्णता क्या है, कि हम भगवान कृष्ण के प्रति पागल हो जाए। तो पागल होना, प्रभुपाद जी का जो पागलपन था वह जो था वह अलग प्रकार का था। चाहे वो प्रभुपाद जी, क्योंकि कल वह चैतन्य महाप्रभु जैसे नवद्वीप में थे, वह जीवों का उद्धार कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी कभी कभी अपने ही भावना में विभोर होकर उनके आंखों से आंसू आते थे और वह दिव्य चेतना में चले जाते थे, पर अधिकांश रूप से प्रभुपाद जी हमारे साथ रहा करते थे और इसी भौतिक स्तर पर रहकर कैसे हमेशा कृष्णमय रहना, कृष्ण के स्मरण में रहना, उसका उन्होंने उदाहरण दिया। और उससे प्रेरित होकर विश्व भर में अभी कृष्ण भावनामृत उन्होंने फैलाया और उनके शिष्य उनके अनुयायी वही चैतन्य महाप्रभु की जो भेंट है, जो कृष्ण प्रेम के भेंट हमें प्रदान कर रहे हैं। तो जो चैतन्य श्रील प्रभुपाद्स मैडनेस वॉज अ टोटल कमिटमेंट टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। प्रभुपाद जी का पागलपन क्या था, वैसे नहीं कि कृष्ण के स्मरण में लीन होके सब कुछ भूल जाना, उनका पागलपन था कि टोटल पूरी तरह से वो अपने गुरुदेव के आदेश के लिए समर्पित हो गए थे। तो वह उदाहरण हम भी स्वीकार कर सकते हैं, और हम जब जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं, श्रवण करते हैं, उसमें अगर हम भी हमारा मन लगाने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे हम भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कृष्ण चे भावना भावित हो जाएंगे, और फिर हमारे इस जीवन के अंत में हम उसी दिव्य कृष्णलीला में प्रवेश कर लेंगे जिसमें इसका झलक चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको दिया है। तो सारांश में हमने आज चर्चा की किस तरह से चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं के बारे में अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। चैतन्य चरितामृत जो है वो तत्वज्ञान का ग्रंथ है एक जीवनी के रूप में, और कवि कर्णपुर ने जो ग्रंथ लिखा है प्रतापरुद्र महाराज के विरह के वेदना को कम करने के लिए, उसमें उन्होंने दिखाया है कि कैसे चैतन्य महापुरुष स्वयं अपने जीवन में दिव्य प्रेम का प्रदान करके कलिराज को हरा देते हैं, और कलिराज के सारे जो अस्त्र है काम क्रोध लोभ और मोह इन सबको हरा देते हैं। तो उन्होंने जो हमको कृष्ण भावनामृत की विधि दी है उससे हम भी कलिराज के सारे अस्त्रों को हरा कर भगवत भक्ति प्रगत होकर भगवत धाम जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, ताई गौर प्रेमानंदे,
श्रीमान चैतन्य चरण प्रभु की जय,
श्री प्रभुपाद की जय।